आइए हम एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आभारी हैं कि हम आज रात यहाँ हैं। हम आभारी हैं कि हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे साथ है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक की आवश्यकता के अनुसार सेवा करें। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ जाएं। बस इन माइक्रोफोन को चालू देखकर अच्छा लगा। मुझे कल इस तरह की गड़बड़ी के लिए बहुत खेद है। वह संदेश जिसे मैं चाहता था कि आप अच्छी तरह समझें, और मैं चाहता था कि आप इसे जरूर देखें। यह वो लंगर है जो हमारे पास है। हम एक कलीसिया से डाले हुए नहीं हैं, हम मसीह में लंगर डाले हुए हैं। आप देखिए, केवल वही वो मार्ग है, वही एकमात्र सुरक्षित स्थान है, केवल वही स्थान है जहां परमेश्वर ने अपना नाम रखा है। और परमेश्वर ने कहा कि वह लोगों से उस स्थान पर मिलेगा जहां उसने अपना नाम रखने के लिए चुना है, न ही किसी भी फाटक में, लेकिन उस फाटक में जिसे उसने चुना है, और उस स्थान में वह लोगों से मिलेगा, और केवल वहीं पर। और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी अपना नाम अपने पुत्र यीशु मसीह के अलावा कहीं और नहीं रखा है, जैसे पुत्र हमेशा पिता का नाम लेता है। और अब आप कहते हैं, अच्छा, क्या आज के लिए यह बात लागू होती है? हर कोई कहता है, मैं यीशु में हूँ। वो वचन है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। फिर से यह प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में भी लिखा है, जब हमने उसे आते देखा दूल्हा और दुल्हन के रूप में, उसका वस्त्र लहू में डूबा हुआ था। उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाया। वह परमेश्वर का वचन है, और यही है, वही वो जिलाने वाली सामर्थ्य है, वही वो पवित्र आत्मा है, वो गति की है जो यंत्रिकी में आती है, जो वचन है जो इसे जीवित बनाता है। और इस सबको एक साथ मिलकर काम करना है, अन्यथा ये बस काम नहीं करेगा। इसे संपूर्ण बाइबल को लेना है, संपूर्ण मसीह को, संपूर्ण सुसमाचार को। मैं इस विशेष समूह से कहना चाहता हूँ जिसे मैंने कल रात टेलीविजन पर देखा था। मुझे यह पता था कि यह प्रसारित होने वाला है, और मैंने इसे देखा। मैं उन भाइयों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ जो उस विशेष समूह में थे। प्रश्नों के उत्तर क्या ही अद्भुत और कुशल तरीके से दिए। और मैं बहुत ही बड़ा आलोचक हूँ वैसे भी, आप जानते हैं, लेकिन वहाँ आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह पूरी तरह से सच्चा था, और मैं इससे 100% सहमत हो सकता हूँ। धन्यवाद, आमीन। उन उत्तरों ने बिल्कुल सही बात को स्पष्ट किया। मैंने निश्चय ही इसकी सराहना की है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी स्थानीय कलीसिया में दिखाने के लिए एक फिल्म होती। यह वास्तव में अच्छा था, और मैं ये जानकर बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने अन्य क्षेत्रों में व्यवहार किया है, हमारे अपने पेंटिकॉस्टल झुंड के अलावा, और लोगों को वहाँ से ले रहा है। परमेश्वर के वे बीज जो इतने वर्षों से वहाँ पड़े हुए हैं, उजियाले को उन पर चमकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मित्रों, यह हमें चेतावनी भी देता है, ये जानने के लिए कि यीशु ने कहा, जब यह सोई हुई कुंवारी तेल खरीदने के लिए आने लगी, तो उसी समय पर दूल्हा आता है। तो हम इस बात से देख सकते हैं, जब हम एपिस्कोपेलियन, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन को देखते हैं, जब वो तेल लेने के लिए वहाँ आ रहे थे, तब यही वो समय था जब दूल्हा आ गया। आइए इसे याद रखें। मेरे बेटे बिल्ली ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात को नहीं कहा जो उसने अभी कुछ क्षण पहले कहा। उसने कहा, डैडी, मैं आपको नहीं बताता हूँ कि क्या करना है, मेरा मतलब आपको किसी भी बात से प्रभावित करने का नहीं है, लेकिन कहा, डैडी, आप जो कुछ भी करते हैं, अपना सारा समय उन बीमार लोगों के लिए लगाएं। उसने कहा, मैंने इतने बीमार लोगों को कभी नहीं देखा। कहा, मैंने एक या दो मिनट में ही 200 कार्ड बांट दिए हैं। कहा, बहुत से लोग बीमार हैं, वह मुझे ऐसा कभी कभार ही बताता है। और फिर मैं आज रात यहाँ कुछ छोटी छोटी बातों को यहाँ लिखकर आया हूँ, और आने वाले न्याय पर कुछ टिप्पणियों को लिखा है। और ये जानते हुए कि हम आज रात यहाँ परमेश्वर के उसी क्रोध के साथ बैठे हैं जो हमारे नीचे ही हलचल कर रहा है, और शीघ्र ही वह सब कुछ नष्ट कर देगा। और ये जानते हुए कि परमेश्वर का क्रोध रुका हुआ है, ठीक इसी समय यह कहा जाएगा ये लाखों लोगों के लिए समाप्त हो जाएगा। और मैं अपने हृदय में यह जानता हूँ और जानता हूँ कि ऐसा ही है। और फिर हम बहुत से बीमारों को आग्रह करते और जोर लगाते हुए देखते हैं, और मैंने सोचा आज रात उनमें से अधिकतर मसीही लोग हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की संतान हो, आप जो भी करें, आप बाकी की सारी चीजों को छोड़ दें, आप अपने पूरे हृदय से दिन और रात परमेश्वर की सेवा करें। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सड़क पर चलते समय भी आप इसे समझ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आप समझते हैं। यदि आप आत्मिक है तो, और मैं जानता हूँ कि आप हैं। और मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, भाई स्ट्रोमी से, मैं नहीं जानता कि टोनी यहाँ पर है या नहीं, वो था टोनी सलामे है, सलामे सलामे नहीं, मैंने गलत टोनी को लिया, नहीं ये गलत टोनी है, ये टूसान का टोनी है, उसका नाम क्या है, स्ट्रोमी, मैं जानता हूँ कि यह सलामे स्ट्रोमी या कोई है, मैंने सब लिया। एक दिन उसकी दुकान में एक व्यक्ति आया, ध्यान आकर्षित करने वाला था, वह कुछ तो ऐसा कह रहा था जिसने मेरी एक याद को ताजा कर दिया, जब मैंने पहली बार जब मैं भारत में था, जहाँ मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने हमें एक समय में सबसे बड़ी भीड़ दी जो बॉम्बे में थी, हमारे पास उन्हें रखने के लिए कहीं भी स्थान नहीं मिल पा रहा था, वहाँ लाखों और लाखों लोग थे। और हमारे वहाँ पहुँचने से ठीक पहले वहाँ एक अखबार का अनुवाद किया गया था, तो ठीक है ऐसा था, भारत एक द्विभाषी देश है, यह अंग्रेजी अखबार था और उसमें छपा था तो भूकंप अवश्य ही समाप्त हो जाएगा, पक्षी वापस उनके घरों की ओर घोंसलों में उड़कर जा रहे हैं। भूकंप आने से कुछ दिन पहले जिसने बाड़े और चीजों को नष्ट कर दिया, छोटे पक्षी अपने आप के लिए चट्टानों में आश्रय को ढूंढते हैं और अपने घोंसलों को बनाते हैं। और दोपहर में या दोपहर के समय जब सूर्य बहुत ही गर्म होता है, सभी जानवर उन चट्टान की दीवारों के पास खड़े होते हैं ताकि छाया में रह सकें। और दो दिनों तक पक्षी पेड़ों पर से बाहर रहे, वे अपने घोंसलों में नहीं आए। और दो दिन वे जानवर भेड़ और गाय बैल वे दोपहर में यहाँ वहाँ घूमते फिरते नहीं थे या न ही उन दीवारों के पास रहते, वे बाहर मैदान में ही बने रहे और छाया के लिए एक दूसरे के सामने खड़े रहते। तब अचानक ही एक भूकंप आया जिसने दीवारों को हिला दिया और इमारतों को नीचे गिरा दिया। और देखो, यदि वे छोटे पक्षी वहाँ पर होते थे तो वे नष्ट हो जाते, यदि गाय बैल और भेड़े इसके नीचे खड़े होते थे तो वे मर जाते। परमेश्वर प्रकृति से चेतावनी देता है। कुछ दिनों पहले भाई टोनी की दुकान में मैं वहाँ एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुन रहा था जिसने कहा, जब अलास्का में इस भूकंप ने जगह लिया, वो वहाँ मछली पकड़ रहा था जिसे हम मेक्सिको में स्टोनी पॉइंट कहते हैं, और उसने कहा पक्षी नहीं खा रहे थे और मछली नहीं खा रही थी, वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी और अचानक से भूकंप आ गया। और एक दिन जब यह भारत में घटित हुआ या वह जहाँ कहीं भी था, उसने कहा कि वह फिर से मछली पकड़ रहा था। उसने सोचा, भाई यह विचित्र बात है, वे मछलियाँ लगभग इसी समय पर खाना खाती हैं, पानी में कहीं भी कोई हलचल नहीं होती है, पानी बिल्कुल शांत होता है, मछली को खिलाने के लिए यही सही समय होता है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। और वे सभी पक्षी जो अक्सर वहाँ पर होते हैं, वे समुद्री पक्षी इन मछलियों और चीजों को वहाँ से उठाते हैं, वे एक दूसरे से सटक कर सभी किनारे पर घूम रहे थे। कुछ ही क्षणों में समुद्री काई एकदम नीचे से इस प्रकार से ऊपर आने लगती है, धरती के दूसरी ओर भूकंप आया था। देखो, वे मछलियाँ जान जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घटित होने वाला है, वे पक्षी भी यही जानते हैं। निश्चय ही यदि परमेश्वर एक मछली और एक पक्षी को इस बात की परख देता है तो उसे अपने बच्चों को कितना अधिक देना चाहिए। हम जानते हैं कि हम अंत के समय में हैं और न्याय रुका हुआ है, इसलिए आओ हम वास्तव में आदर पूर्व बने, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर दौड़ें। हे कफरनहूम, तू जिसे स्वर्ग में ऊंचा उठाया गया है उसे अधोलोक में नीचा किया जाएगा, और आज वह जल की तलहटी में पड़ा हुआ है। बस याद रखें और प्रार्थना करें। अब आज रात में यहाँ बाइबल में से कुछ क्षणों के लिए एक स्थान से पढ़ना चाहता हूँ। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। बिल्ली ने कहा कि उसने ढेर सारे प्रार्थना कार्ड को बांटा है, और उसने कल कुछ कार्ड बांटे, और कल रात उनमें से मैंने प्रार्थना के लिए किसी को भी नहीं लिया। और मैं सोच रहा था जब पवित्र आत्मा आया या बस आप इसे अपनी ओर से चला नहीं सकते, यह तो एक छोटे लीवर के समान है जिससे आप स्वयं को एक गति में ले आते हैं। आप ही वो एक हैं जो पवित्र आत्मा को क्रिया में लेकर आते हैं, मैं नहीं, आप इसे स्वयं करते हैं। इसलिए मैंने कल रात मैंने ध्यान दिया, यहाँ तक कि विचारों को परखने में भी यह कभी भी लोगों से सही से नहीं जुड़ पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। मैंने हाल ही में इसे पाया, ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुछ हद तक जब मैं बीमारों पर हाथ रखते हुए बोल ही रहा होता हूँ, वे समझ जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये दिया गया है, हम जो यीशु मसीह का विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा से जन्मे हैं और उस जिलाने वाली सामर्थ्य से भरे हुए हैं, वो सामर्थ्य जो आप में है, दूसरों पर हाथों को रखने के द्वारा जैसे चेलों ने किया और युगों में से करते आ रहे हैं। इसने बीमारों को पूरी तरह से चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया, इसने दर्शन भविष्यवाणियों को दिखाया, और वही आत्मा जो आरंभिक प्रेरितों के बीच में रही थी आज कलीसिया में रह रही है, ठीक उन्हीं चीजों पर काम कर रही है, और हम इसे जितनी ही जल्दी पहचान सकते हैं। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना काम कर रहा है, आपको इसे पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। यह जरा सा भी भला नहीं करेगा जब तक आप इसे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिस क्षण आप इस पर विश्वास करते हैं आपकी परेशानियाँ खत्म हो जाती है, ये सच है। अब आइए हम वचन की ओर जाएं। कुछ क्षण पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था, कुछ और वचनों को लिखकर रख रहा था कि रात के लिए अपना मूल पाठ बदल दूं, और मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। संत लूका की पुस्तक में से 8वां अध्याय 40वें पद से आरंभ करते हुए अब सुनना, मैं विस्तार से पढ़ने जा रहा हूँ। जब यीशु लौट रहा था तो लोगों ने उसे आनंद के साथ ग्रहण किया, क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या यह आज रात उपस्थित लोगों के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं होगा? और देखो, याइर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, वो आया और यीशु के पांव पर गिरकर और उससे विनती करने लगा, मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और फिर भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर और उसके वस्त्र के छोर को छुआ और तुरंत ही उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरती पड़ती है और कहता है कि किसने मुझे छुआ है? यीशु ने कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और जब स्त्री ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। और उसने उससे कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। और जब वो यह कह ही रहा था तो वहाँ किसी एक ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर उससे कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को परेशान न कर। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया कहते हुए, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह चंगी हो जाएगी। और जब वो घर में आया तो उसने किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़की के पिता और माता को ही अंदर लिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। और उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। और वे ये जानकर कि मर गई है उस पर हंसने लगे, परंतु उसने सबको बाहर कर दिया और उसने उसका हाथ पकड़ा और दासी को पुकार कर कहा, हे दासी, उठ। और तब उसकी आत्मा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई, और फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। और उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चेतावनी दी कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। अब आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यह सत्य है, ऐसा घटित हुआ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जिसे हम हो सकता है किसी अखबार या किसी काल्पनिक किताब में पढ़ते हैं, लेकिन यह उस किताब से आया है जिसे हम जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ था। हम विश्वास करते हैं कि यह यीशु ने इस उल्लेखनीय काम को किया। यहाँ पर दो उदाहरण हैं, लहू बहने वाली स्त्री के साथ और मरे हुए बालक के साथ। हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है जिसे परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और उसे आज रात पवित्र आत्मा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और हम विश्वास करते हैं कि वो आज रात हमारे साथ है, और ये विश्वास करते हुए कि वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, उसकी करुणा लोगों तक पहुंचती है, और जैसे जैसे लोग उस तक पहुंचते हैं वैसे वैसे वही परिणाम मिलते हैं जो उस दिन में दिए गए ये आज के दिन दिए जाएंगे। इसे फिर से प्रदान करें पिता, ताकि हमें एक ताजा अभिषेक प्राप्त हो सके। जैसा कि भाई शेकरियन ने कुछ समय पहले बहुत ही ईमानदारी से पूछा था और श्रोतागण से विश्वास करने को कहा था, हम फिर से यीशु मसीह के नाम में मांग रहे हैं, आमीन। मैं बस कुछ क्षणों के लिए बोलना चाहता हूं, और यह बस कुछ समय के लिए ही होगा, क्योंकि मैं उन लोगों को प्रार्थना कार्ड के साथ यहां पर लाना चाहता हूं और उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और किसी भी अन्य बात को छोड़ते हुए केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, पहले हमें लोगों को इस दृष्टिकोण में लाना होगा। यही वो दृष्टिकोण है जो हमेशा ही परिणाम को लाता है। यह वही दृष्टिकोण है जिसे आप परमेश्वर के प्रति रखते हैं। यहाँ एक स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, वह चंगी हो गई लहू के रोग से। एक सिपाही ने उसके मुँह पर थूका और उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और किसी सद्गुण को महसूस नहीं किया। यह तो आपका दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण ही वह बात है जो इसके लिए जरूरी है, और आज रात यही बात है प्रिय मित्र, इसके लिए दृष्टिकोण जरूरी है। हम दृष्टिकोण रखते हैं और विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, लेकिन यह आपका दृष्टिकोण है जो परिणाम को लाता है। यांत्रिकी यहाँ पर है और वैसे ही गति की भी यहाँ है। यदि आप बस आरंभ कर सकते हैं तो बाकी का सब परमेश्वर करेगा। अब जिस विषय पर मैं कुछ क्षणों के लिए बोलना चाहता हूँ वो है अपने वचन को साबित करता है। अब यह एक महान बात है इस बारे में सोचना, अपने वचन को साबित करता है। अब परमेश्वर बस आज रात अपने वचन को साबित करने में उतना ही सक्षम है जितना उसने हमेशा ही इसे साबित किया है, और बाइबल ने भी कहा सारी बातों को साबित करो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। अब कोई संदेह नहीं, आपने पुरानी कहावत को सुना होगा, इसे साबित करो मैं इसका विश्वास करूंगा, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत सी बार मैंने बहुत सी बातों को साबित होते देखा है जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से भी साबित हुई थी, और फिर भी लोगों ने किसी भी तरह से इस पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय पहले मैं यहाँ एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, हम दिव्य चंगाई के बारे में बात कर रहे थे। उसने कहा मैं इसका विश्वास नहीं करूँगा, मैं परवाह नहीं करता कि क्या होगा, आप इसे कितना भी साबित करके दिखा सकते हैं, मैं फिर भी इसका विश्वास नहीं करता। तो निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस व्यक्ति के लिए क्या भी करें, वो नष्ट हो गया है, वो विश्वास नहीं कर सकता, उसके अंदर विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अभी लगभग एक सप्ताह पहले यहाँ एक छोटा सा अनुभव मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शिकार करता हूँ, और जब मैं अपनी सभा से वापस आया तो मैं शेर का शिकार कर रहा था, और जब मैं एरिजोना में आया तो ये अच्छा होता है, मैं बड़े शिकार करना पसंद करता हूँ, और मैं प्रकृति के बीच वहाँ जाकर और उसे देखना पसंद करता हूँ। अब मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैं तो बस शिकार करता हूँ, इसलिए मैं शिकार को नष्ट करना पसंद नहीं करता। मैं नहीं सोचता कि यह सही है, मैं सोचता हूँ कि यह उतना ही पाप है जितना कि शिकार को मारना, जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही इसे एक उद्देश्य के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। ऐसा करना किसी भी चीज को मारने जैसा होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने इसे हमें भोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए दिया है, और हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब व्यवस्था जो कहती है आप ले सकते हो, ये ठीक है, बस इसे बर्बाद मत करें। और मैं वहाँ नीचे था, बाकी सब चीजों का मौसम खत्म हो चुका था, शेर बहुत से पशुओं को मारता है, और मैं देश में बहुत से पशु पालकों को जानता हूँ, और हर बार उन्हें एक मरा हुआ मिलता है, इसलिए वे मुझे बुलाते हैं जब एक शेर भीड़ों के बीच में घुस जाता है। मेरे किसी मित्र ने उस रात लगभग $3,500 एक ही रात में गवा दिए, एक शेर के द्वारा केवल मेमनों को मारने पर। वह अंदर घुस गया और निश्चित रूप से बाकी शेरों को उसके पाप की कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर मैंने उस शेर को मार गिराया और वह बहुत बड़ा शेर था, 9 फीट लंबा था और उसका वजन करीब 200 कुछ था। सो यह एक अच्छा बड़ा शेर था। और फिर मैं शिकार करने के लिए एरिजोना देश से यूटा चला गया और फिर मुझे ये बताया गया ऊपर कुछ लोग थे और जिस व्यक्ति के साथ मैं शिकार करने वाला था वो सरकार की ओर से जानवर को फंसाने का काम करता है। और तुम्हारी भलाई के लिए कहूँगा उसके आसपास भी धर्म के विषय में कुछ भी बात न करना। कहा, वह एक बहुत ही कठोर व्यक्ति है। और मैंने कहा ठीक है। मैंने उस व्यक्ति से कहा जिसके साथ मैं जा रहा था, मैंने कहा मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। उसने कहा प्रचारक मत कहना, यदि आप कहते हैं तो आप कभी भी शिकार पर नहीं जा पाएंगे, वो आपको नहीं ले जाएगा। कहा मैंने उसके साथ 3 दिन तक शिकार किया और हर रात उसके साथ सोया, हर दिन उसके साथ खाना खाया और उसने कभी यह भी नहीं कहा सुप्रभात, आप कैसे हो, आप कुछ खाना चाहते हो, बर्तन धोए, कुछ भी नहीं। कहा अब बस इसके बारे में कुछ मत कहना। मैंने कहा मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। इसलिए मैंने उससे यह नहीं कहा कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस उसे बताता रहा कि मैं और मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए जब हम वहां पहुंचे तो वह व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का था और मैंने नहीं सोचा कि वह किसी चीज का विश्वास करता होगा। और अभी कुछ रात पहले ही उसने एक बच्चे को खोया था जो एक मृत जन्मा बालक था। सो हम शिकार पर गए और अगले दिन पर जिस व्यक्ति के साथ मैं शिकार कर रहा था उसने उसे बताया, कहा कि मैं सारे देश भर में किसी भी जगह शिकार कर सकता हूँ। तो जब दूसरा शिकारी जो मेरे साथ था वो चला गया, हम बहुत ऊपर पहाड़ी की चोटी पर थे, वहाँ हमने एक शेर का पीछा किया, यहाँ तक कि उसे चट्टानों के बीच घेर लिया और वो भाग कर निकल गया। और फिर हम वहीं बैठे हुए थे, कुत्ते के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और इस व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसने कहा दूसरा शिकारी, आपका मित्र मुझे बता रहा था कि आपको हर जगह शिकार करना है, आपके पास बहुत सारा पैसा है। कहा मुझे लगता है कि ये पूछना मेरा काम नहीं है। और मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बहुत सारा पैसा नहीं है, मैंने कहा मुझे प्रायोजित किया गया है। और उसने कहा ओह मैं समझा। उसने कहा ठीक है, मुझे लगता है कि यह फिर से पूछना मेरा काम नहीं है, लेकिन कहा क्या आप एक फर्म के साथ काम करते हैं जो आपको प्रायोजित करती है। वह इसे ठीक मेरे अंदर से बाहर निकाल रहा था। मैंने वादा किया था मैं इस पर बात नहीं करूंगा, देखो। इसलिए मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा नहीं श्रीमान, मैं एक प्रचारक हूँ, एक मिशनरी हूँ। उसने कहा क्या। मैंने कहा मिशनरी। और वह बस कुछ मिनटों के लिए खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। मैंने कहा क्या आपके पास इसके बाद के जीवन के लिए कोई आशा है, आपकी आशा क्या है। उसने कहा मैं एक जैक मॉर्मन हूँ। और मैंने कहा एक क्या है। उसने कहा एक जैक मॉर्मन। मैंने कहा ये किस प्रकार का होता है। कहा वो जो गालियाँ देता है और कॉफी पीता है और सिगरेट पीता है। मैंने कहा ये अच्छा है, एक ईमानदारी से किया गया अंगीकार प्राण के लिए अच्छा होता है। और फिर उसने कहा मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे बताया गया है कि केवल मॉर्मन कलीसिया ही वहाँ एक सच्ची कलीसिया है। उसने कहा क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा जब ये कलीसिया की बात आती है तो मुझे लगता है कि यह उनमें से किसी भी कलीसिया के जैसी ही अच्छी है। मैं केवल एक सत्य को जानता हूँ और वो है यीशु मसीह। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि वो सत्य है। तो ठीक है। उसने कहा उस रात मेरा एक बच्चा जन्मा था, वो मृत जन्मा था। उसने कहा मुझे बताया गया है कि यह बच्चा क्योंकि यह मृत जन्मा था परमेश्वर ने इसमें कभी जीवन की सांस को नहीं फूका कि मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उसने कहा आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो ठीक है। मैंने कहा आप जैक मॉर्मन के समान नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप नहीं करेंगे। यह एक बात तो निश्चित है, जब तक आप जैक मॉर्मन बने रहेंगे तब तक आप इसे नहीं देख पाएंगे। और उसने कहा तो ठीक है। वो मुझे पलटकर उत्तर दे रहा था इसलिए मैंने वापस उसे थोड़ा पलटकर उत्तर दिया। आप देखिए हमारे पास वापस उत्तर देने का समय था। सो उसने कहा। मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा ओह मैं नहीं जानता। और उसने कहा अच्छा आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा मैं बहुत सारे भले लोगों से परिचित हूँ, मैं नहीं जानता था कि वो एक मॉर्मन है। और मैं एक बहुत ही मैं जानता था ये यूटा में होने के कारण ये शायद ऐसा ही था, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ सॉल्ट लेक सिटी के आसपास के ज्यादातर लोग मॉर्मन है, हालांकि ये सॉल्ट लेक सिटी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा तो ठीक है, मेरे कुछ अच्छे मॉर्मन मित्र थे जो प्रार्थना की पंक्तियों में आए हैं, वे अच्छे लोग हैं। और मैंने कहा मैं कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से मिला हूँ जो मॉर्मन हैं। और उसने कहा तो उसने कहा, मैंने कहा मैं इस विषय पर उनकी शिक्षा को नहीं जानता और न ही मैं उनकी शिक्षा के विपरीत कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि आप वही हैं और मैं इसका बहुत ही सम्मान करता हूँ। और मैंने कहा, खैर, और आप इसका विश्वास करते हैं? उसने कहा, हाँ श्रीमान, मैं करता हूँ, लेकिन कहा मैं उसके अनुसार नहीं जीता। मैंने कहा, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर उस बच्चे को जानता था लाखों वर्ष पहले, दुनिया की नींव डालने से पहले। मैंने कहा, परमेश्वर ने यरमिया को बताया, इससे पहले कि तू कभी अपनी माँ के गर्भ में आता, इससे पहले कि तू कभी गर्भ से जन्म लेता, मैं तुम्हें जानता था, तुम्हें पवित्र किया और तुम्हें राष्ट्रों के लिए एक भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने कहा, इसी तरह से वो इसके बारे में जानता था, देखा। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, धन्यवाद। वह पहाड़ी से नीचे की ओर चलने लगा और फिर वह इस दूसरे व्यक्ति से मिला और उसने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो व्यक्ति एक प्रचारक है? और इसलिए हम उसने उससे थोड़ी बातचीत की और उसे स्वभाव के बारे में बताना शुरू किया। अब मॉर्मन भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। मैं नहीं, शायद यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वे भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। लेकिन तो हो सकता है मैं शिक्षा से बाहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं, जी हाँ जी हाँ, लेकिन जो भी हो वे विश्वास करते हैं। और उसने कहा, वो मेरे पास वापस आया, कहा मैं समझता हूँ कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैंने कहा मैं, प्रभु ने मुझे कुछ बातें घटित होने के लिए बताई हैं। और वह तुरंत ही वहाँ से चला गया, कहा आओ हम चलें, और वह अपनी कार में बैठ गया और अपने छोटे से शहर में चला गया जहाँ वो रहता था। कुछ ही क्षणों में वो गायब हो गया। हम दोपहर के भोजन के तुरंत बाद एक और शिकार पर जाने के लिए कुत्तों को तैयार कर रहे थे और जब हम तैयार हुए वो कार को लेकर चला गया। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर से युवक के साथ वापस आया जो लगभग 17 वर्ष का था, एक सच्चा संत सा दिखने वाला मसीह सज्जन व्यक्ति। उसने कहा, यह मेरा भाई है, कहा वो जैक मॉर्मन नहीं है, वो एक असली मॉर्मन है। मैंने कहा, पुत्र तुम कैसे हो? और उसने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरा भाई मुझे बता रहा था कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। मैंने कहा, प्रभु मुझे कुछ घटित होने वाली बातों को दिखाता है। उसने कहा, मेरे हाथ में ठीक अभी गोली लगी है, मुझे ऑपरेशन की मेज पर होना चाहिए। उसने कहा, लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये बताया। और मैंने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसने मेरे आँख में सीधे देखा, एक ईमानदार सच्चाई गंभीर दृष्टि से कहा, आप अपने हाथ मुझ पर रख दीजिए, यदि ये चीजें ऐसी हैं तो मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। वो ठीक होकर घर चला गया। यह भाई मेरा मसीही मित्र फिनिक्स से मेरे साथ शिकार पर था। उसने मुझसे कहा, उसने कहा उनमें से कुछ लड़के ठीक अभी यहीं पर बैठे हैं, उनमें से एक को मैं जानता हूँ कि यहाँ उपस्थित है। हम घर चले गए। उसने कहा, भाई ब्रैनम, यदि प्रभु आपको दर्शन को दिखाता है और आप उन मॉर्मन को बताएं कि अब आगे क्या होने जा रहा है तो इससे बात बन जाएगी, क्योंकि वे उसी बात के लिए देख रहे हैं। इसलिए मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की और वापस अपने घर की ओर रास्ते पर था। आने वाले सोमवार रविवार को लगभग 10 बजे मैं उस सुबह कलीसिया की सभा के बाद कमरे में खड़ा हुआ था और बाहर की ओर देख रहा था और मैंने देखा कि प्रकाश चमक रहा था या किसी प्रकार की एक रोशनी चमक रही थी और मैंने एक सिंह को देखा जो एक पेड़ पर था और यह मेरे लिए बहुत ही छोटा था कि मैं उस पर गोली चलाऊं। मैं ऐसा नहीं चाहता था और वहाँ किसी और ने इसे गोली मारी थी और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने इसे बहुत बड़ी बंदूक से गोली मारी थी। इसने उस सिंह को उड़ा दिया था। मैं इसकी सराहना नहीं करता जिस तरह से इसे किया गया था। जब मैं फिनिक्स पहुंचा, मैंने भाई डॉसन को और भाई मोसली को ये बताया। मैं जानता हूं कि वो यहीं पर हैं। मैंने उसे उस दिन यहां कहीं तो देखा था और वह मेरे साथ ऊपर जा रहा था, वो और उसकी पत्नी। और मैंने कहा, तुम देखते रहना और देखना, यह यहोवा यह कहता है ये इसी तरह से होने जा रहा है। हमने 4 या 5 रातों तक प्रतीक्षा की या कुछ दिन तक हमने शिकार किया। बहुत कम ऐसा होता है कि रात में शेर पेड़ पर चढ़ जाएं। ऐसा हुआ कि जब वापस घर लौट रहे थे तो इस शिकारी ने, इस मॉर्मन लड़के ने कुत्तों को छोड़ दिया और उस शेर ने निशान पकड़ लिए, या मेरा मतलब कि कुत्ते ने शेर के निशान पकड़ लिए और उसका पीछा करते करते उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। और रात के 10 बजे वे आए और हमें बिस्तर से उठा लिया। हम वहाँ बाहर गए और वही शेर पेड़ पर बैठा था। रोशनी को चमकाते हुए भाई मोसली ने उस पर लगभग एक 44 कैलिबर की बंदूक से गोली चलाई, जिससे ऐसा लगा मानो शेर के 2 टुकड़े हो गए हों। और यह वहाँ था बिल्कुल वैसे ही जैसे इसे कहा गया था। अगले दिन मैं राज्य के मुख्य शिकार के संचालक से मिला, जो एक और जैक मॉर्मन था। उन लड़कों को एक साथ लेकर उनकी मसी के पास वापस घर की ओर अगुवाई की। मैं आपको बताता हूँ, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर अपने वचन को ऐसा होने के लिए साबित करता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सच नहीं है। बहुत से लोग देखते हैं और वे फिर भी विश्वास नहीं करते हैं। उन दिनों में जब यीशु धरती पर था, उन्होंने उसे क्यों नहीं पहचाना कि वो परमेश्वर का वचन था जो प्रकट हुआ? लोगों को यह क्यों एहसास नहीं हुआ कि मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मेरे समान एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा, और उसने बाइबल में बोले गए हर एक वचन को पूरा किया कि वो ऐसा करेगा? लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने हर युग में अपने वचन को सत्य साबित किया है। वो हमेशा ही अपने वचन को साबित करता है। फिर वे कभी कभी कहते हैं कि देखकर ही विश्वास कर सकते हैं, यह ऐसा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हर युग में अपने वचन को साबित करता है। हम जानते हैं कि उसने आदम और हवा के लिए इसे साबित किया कि जब उसने कहा जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उस दिन तुम निश्चय ही मर जाओगे, हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह सत्य है। हम यह विश्वास करते हैं क्योंकि उसने इसे हमारे लिए साबित किया है, और हम जानते हैं कि यह सत्य है। अब हम कुछ स्थानों से लेंगे जहां परमेश्वर ने अपने वचन को साबित किया। उदाहरण के लिए आइए नूह के दिनों में देखें। परमेश्वर ने नूह को एक संदेश दिया जो निश्चित रूप से अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय था। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। धरती पर कभी बारिश नहीं हुई थी। अवैज्ञानिक, हो सकता है कि वे तब आज की तुलना में एक सबसे बड़े वैज्ञानिक युग में थे, क्योंकि उन्होंने पिरामिड और पत्थर की ऐसी कल्पित मूर्तियों और इत्यादि को बनाया उन दिनों में, जिसे अब हम नहीं बना सकते हैं। वे एक शक्ति से परिचित थे, किसी प्रकार की यांत्रिक शक्ति से, शायद परमाणु या कुछ तो और, कि वे उन बड़े बड़े शिला खंडों को उठा सकें, जिसे आज हम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक चीजों को किया। उनके पास कुछ तो था जिससे वे एक शरीर को लेप लगा सकते थे, ताकि इसे सैकड़ों वर्षों तक दिखने में स्वाभाविक बनाए रखे। हमने उस कला को खो दिया है। यीशु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। और हम जानते हैं कि हमें एक और बड़े वैज्ञानिक युग में प्रवेश करना है। और अब जो संदेश नूह के पास था कलीसिया में उस दिन के विश्वास के बिल्कुल विपरीत था, और यह वैज्ञानिक अनुसंधान के भी बिल्कुल विपरीत था। लेकिन परमेश्वर ने साबित किया कि उसका वचन सत्य है। परमेश्वर ने साबित किया कि उस भविष्यवक्ता ने जो कहा वो सत्य था। साथ ही हम कुछ समय के लिए दूसरे को लेंगे। अब्राहम प्रभु का एक और भविष्यवक्ता था जिसके पास वचन पहुंचा और उसे बताया जब वो 75 वर्ष का था और सारा 65 वर्ष की थी कि सारा से उसे एक बालक होने जा रहा है। अब यह एक अविश्वासी के लिए बड़ा झटका है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आज इस दिन में भी ऐसी कोई घटना हो सकती है? हमारी सभी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ और इन सारे जांच की नली या टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चों के विषय में वे बात करते हैं और इत्यादि, लेकिन यह बूढ़ी महिला जो अब 65 वर्ष की है और एक बूढ़ा पुरुष जो 75 वर्ष का है, लेकिन प्रभु का वचन अब्राहम के पास आया और उसे बताया कि ऐसा ही होने जा रहा है, और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर कितना भी बोले और यह कितना भी सच्चा हो, अब्राहम को विश्वास करना ही था जो परमेश्वर ने कहा, ताकि इसे वैसा ही बनाए। अब देखिए कैसे उस व्यक्ति की गवाही के साथ परीक्षा हुई जो उसने विश्वास किया। वही व्यक्ति जिसने यह स्वीकार किया था कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो आपके जैसा व्यक्ति है। आज रात यहाँ बैठा हुआ है। हम अब भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमें यह विश्वास करना होगा कि उसका वचन सत्य है, और वो इसे साबित कर देगा कि यह सत्य है, यदि हम बस इसका विश्वास करें। अब उस रुकावट को देखें जो अब्राहम के पास थी। पहली बात तो यह थी कि उसकी उम्र 75 वर्ष थी और सारा 65 वर्ष की थी। वह जीवन के बदलाव को पार कर चुकी थी, रजोनवृत्ति, कोई संदेह नहीं। लेकिन यह तो कई वर्षों पहले ही रुक गया था। वह उसके साथ रहा, एक पत्नी की नाई, वह उसकी सौतेली बहन थी। शायद उसने उससे तब विवाह किया था जब वो किशोरावस्था में एक लड़की ही थी, और उससे विवाह कर लिया था, और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पूरी तरह से बांझ थी, और अब हम पाते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे खुद को उन सभी लोगों से अलग करना था जिन्होंने इसे विश्वास नहीं किया, जिससे कि यह बात पूरी हो सके। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को लोगों से अलग करना होगा, लेकिन आपको खुद को अविश्वास की सारी व्यर्थ बातों से अलग करना होगा और उससे दूर रहना होगा। जब लोग कहते हैं आह ऐसी चीजें नहीं होती हैं, यह एक पागलों का झुंड है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऐसा हो रहा है, बस अपने कान बंद कर लो और वहाँ से चले जाओ, इस पर कोई ध्यान मत दो। बाइबल ने कहा कि अब्राहम अविश्वास में से होते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर नहीं डगमगाया, लेकिन वह मजबूत होता गया, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। उसका नाम अब्राहम से बदलकर अब्राहम कर दिया गया। नाम के बदलने पर उसका नाम राष्ट्रों का पिता बन गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, उसकी हृदय प्रिय कि वह जिसके साथ अब इतने वर्षों से रह रहा था और अब वो लगभग 80 वर्ष का हो चुका है और उसकी पत्नी 70 वर्ष की हो चुकी है और फिर भी बिना किसी संतान के हैं या संतान की कोई आशा नहीं है, फिर भी ये दावा किया कि वो राष्ट्र का पिता है। क्या आप उस आलोचना की कल्पना कर सकते हैं जो वहाँ से गुजरते हुए उसके साथी कह रहे होंगे, राष्ट्रों के पिता अब इस समय आपके कितने बच्चे हैं? और काफी आलोचनाओं से उसे गुजरना पड़ा था, लेकिन अब्राहम अविश्वास से बिल्कुल कहीं भी नहीं डगमगाया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जो उसने प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करने में सक्षम है, कि परमेश्वर अपने वचन को साबित करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगे, लेकिन हर बार बजाय कमजोर होने के जैसे कि हम अक्सर होते हैं, वो हर समय मजबूत होता गया। यदि यह आज नहीं हुआ तो कल यह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि यह एक दिन उम्र और बढ़ गई है। वो परमेश्वर था, यह अब्राहम में परमेश्वर था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ने अपने सभी वचनों को ऐसा ही साबित किया है। यदि उसके बच्चे केवल उसके वचन को लेंगे तो वह इसे आपके द्वारा साबित कर सकता है। केवल यही वो जरिया है, वो अपने वचन को साबित कर सकता है। वो इसे अविश्वासियों के लिए साबित नहीं करता है, उन्हें साबित नहीं किया जा सकता है, वे अविश्वासी हैं, लेकिन यह अविश्वासियों के लिए नहीं है, यह अविश्वासियों के लिए नहीं है, यह उसके लिए है जो विश्वास करता है। और यदि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसके वचन का विश्वास करे, तो वो आपके द्वारा अपने वचन को साबित करेगा। और कभी कभी बीमारी और चीजें हमारे साथ इस तरह से घटित होती हैं कि परमेश्वर स्वयं को साबित कर सकता है। क्या आपको वो अंधा व्यक्ति याद है जो यीशु को मिला था? उन्होंने कहा, किसने पाप किया, उसने या उसके पिता ने, उसकी माँ ने? उसने कहा, इस मामले में किसी ने नहीं, लेकिन जिससे परमेश्वर के कामों को प्रकट किया जा सके। देखो, यह उस लड़के के साथ ऐसा इसलिए हुआ जिससे यीशु की महिमा हो सके। कभी कभी बीमारी अभिशाप नहीं होती, यह एक आशीष होती है कि हम अपने विश्वास को वहाँ पर बनाए रखें और उन चीजों को जो नहीं है उसे ऐसा कहें मानो वे हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है और वो इसे साबित करेगा कि ऐसा ही है। यदि आप परीक्षा में कमजोर ना पड़े, वो एक समय अय्यूब को यह साबित कर सकता था कि वो उसके मुंह पर उसे शाप नहीं देगा। उस परीक्षा की ओर देखें जिसमें से होकर अय्यूब गुजरा, लेकिन मौत के मुंह में जाते हुए भी उसने फिर भी कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने निश्चय ही इसका विश्वास किया। परमेश्वर ने अय्यूब पर अपना वचन साबित किया, उसने अब्राहम के लिए इसे साबित किया, उसने इसे ऐसा ही साबित किया, साथ ही इसे मूसा के द्वारा उसने साबित किया। और जब मूसा के सामने कठिनाई इतनी अधिक थी, तब मूसा के मन में यह था कि शायद छुड़ाने वाला बनने के लिए, जो कि उसकी माँ ने शायद उसे बताया था कि वो एक उचित बालक के रूप में जन्मा था, वो उसकी निजी शिक्षिका थी जिसने उसे फिरौन के महल में पाला पोसा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे बताया था, पुत्र हमने प्रार्थना की है कि हमें छुड़ाया जाएगा, और हम विश्वास करते हैं कि तुम ही वो बालक हो जिसे परमेश्वर छुड़ाने के लिए उपयोग करेगा। और फिर जब वो देखो वो बड़ा हुआ और उसे फिरौन की पुत्री का पुत्र होना था, और हम पाते हैं कि वो सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने वाला था। क्यों? इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय उनके मन में था कि वो अगला फिरौन बनेगा और इसी तरह से वो लोगों को छुड़ाएगा अगला फिरौन होने के द्वारा। लेकिन परमेश्वर के पास एक यदि ऐसा होता तो वह इसे किसी भौतिक साधन के जरिए से करता, एक राजनीति के कार्य के जरिए से करता, लेकिन परमेश्वर हमेशा ही इस तरह से काम नहीं करता है। परमेश्वर के पास काम करने के अपने तरीके होते हैं, और उसने कहा कि वो उन्हें बाहर लेकर आएगा। उसने अब्राहम से कहा 400 वर्षों के बाद वह उन्हें सामर्थी हाथ से बाहर निकालेगा, वो चिन्ह और अद्भुत कार्यों को दिखाएगा, इसलिए वो इस तरह से नहीं कर सका। इसलिए हम पाते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अब यहाँ मूसा परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। और मूसा ने उसी खिड़की से बाहर की ओर देखा जिस खिड़की से फिरौन ने देखा था। उसने उन्हीं लोगों को देखा, उस फिरौन ने उन्हें उस नजरिए से देखा जैसे एक शापित लोग हैं, एक ऐसे लोग जिनके पास एक परमेश्वर के लिए कट्टरता के सिवा और कुछ भी नहीं है। और कोई तो रेगिस्तान का परमेश्वर कहीं तो है जिसके विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है, एक अदृश्य स्तंभ जिससे वे प्रार्थना करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वे कट्टरपंथियों का झुंड है और वे गुलामों का एक झुंड था और उनके परमेश्वर ने उन्हें गुलाम होने दिया, साबित कर दिया कि वो परमेश्वर नहीं है। और ठीक पूरी घटना के बीच में वह उसी मनुष्य को पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। परमेश्वर ऐसे अजीबोगरीब तरीके से उन चीजों को करता है ठीक उन्हीं के नीचे। ना ही कोई धर्मज्ञानी, ना ही कोई शिक्षक, ना ही कोई याजक, ना ही उनके पवित्र लोगों में से कोई एक, लेकिन बस एक साधारण सा व्यक्ति जो इस काम के लिए जन्मा। और परमेश्वर ने उसे अपना भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया और उसे वहाँ नीचे भेजा और उसके हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था, एक ऐसी सेना का सामना करने के लिए मशीनीकृत इकाइयाँ जिसने सारे संसार को जीत लिया था। लेकिन उसके हाथ में उस छड़ी के साथ, जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि उस छड़ी को अपने हाथ में थामे रखना और वो इज़राइल को छुड़ा लेगा, और उसने नीचे वहाँ जाकर और इसे किया क्योंकि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी। वो इसे कैसे करने जा रहा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं बोलने में धीमा हूँ, मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। और मैं उसके पास लाखों बहाने थे, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और बस इतना ही काफी था। वह परमेश्वर के वचन को लेकर चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्तव्य कितना भी खतरनाक दिखाई दिया, मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास करना जारी रखा और परमेश्वर ने मूसा के जरिए से अपने वचन को सत्य साबित किया, क्योंकि इस बात की परवाह किए बिना कि क्या बात ने जगह ली, मूसा ठीक वचन के साथ बना रहा। यात्रा के समय में परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में भी बताया कि वो उन्हें छुड़ाएगा, एक प्रतिज्ञा के देश के अंदर ले जाएगा, एक अच्छा देश दूध और शहद से भरा हुआ, और यह बिल्कुल वहाँ पर था। वे नहीं जानते थे कि यह वहाँ पर है, लेकिन उसने कहा यह वहाँ पर है और मैंने इसे तुम्हें दे दिया है, यह पहले से ही तुम्हारा है, बस जाकर इसे दावा करें। और जंगल में जब उनमें से बहुत से आत्मा में नाचते हुए बाहर आए, जब मरियम ने डब को बजाया, वे स्वर्ग में से आए हुए मन्ना को खा रहे थे। मूसा को आत्मा में गाते हुए सुना, वे चमत्कारों और चिन्हों को होते हुए देख रहे थे। लेकिन जब यह एक निर्णायक फैसले की बात आई कि परमेश्वर के सारे वचन का विश्वास करें, सारी प्रतिज्ञा का, तो वे वहाँ पर विफल हो गए। उनमें से केवल दो लोगों ने ही इसका विश्वास किया, वे थे यहोशू और कालेब, और वे प्रमाण को लेकर वापस आए कि वो देश अच्छा है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि यही उनके लिए रुकावट बन रही थी, इसलिए उन्होंने कहा हम उस देश को लेने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनके नगर दीवारों से घिरे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि वहाँ पर हैं, न ही उनके प्रतिनिधि लेकिन उनके लोग जो बहुत बड़े बड़े दानव हैं, क्योंकि उनके सामने हम टिड्डियों की तरह दिखाई देते हैं। यहोशू और कालेब ने कहा हम इसे अधिकार में लेने के लिए सक्षम हैं, क्यों? परमेश्वर ने इसे उन्हें दे दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दानव कितने बड़े थे, वो रुकावट उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। परमेश्वर ने ऐसा कहा था और परमेश्वर ने इसे उनके द्वारा साबित किया, और उन्होंने वहाँ जाकर और देश को ले लिया जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि वे इसे कर लेंगे। उसने उनके लिए इसे साबित किया। अब जब वे अप्रैल के महीने में वहाँ पर आए, जब पानी पहाड़ों से बर्फ के ढेरों से नीचे की ओर तेजी से बह रहा था और इत्यादि, और ऐसा दिखाई दिया जैसे कि परमेश्वर एक कमजोर सा सेनापति है कि वो उसकी सेना को ठीक एक स्थान की ओर ले आया जहाँ वे प्रतिज्ञा के देश में जाने से रुक गए। और जिस समय वो उन्हें वहाँ पर लेकर गया, वह उन्हें उस पार ले जाने वाला था। ये वर्ष का सबसे खराब महीना होता था, वो महीना यर्दन नदी अपने किनारों से ऊपर बह रही थी, पानी बहकर बाहर खेतों के अंदर आ गया। क्यों? यदि वे उन्हें अधिकार करने जा रहे थे तो यह गर्मियों के समय में होता जब वे पानी के रास्ते को पार कर सकते थे, लेकिन वो तब तक रुका रहा जब तक पानी गहरा नहीं हो गया। वो यह दिखाना पसंद करता है कि वो परमेश्वर है, वो अपने वचन को साबित करना पसंद करता है चाहे कुछ भी हो जाए। कोई परवाह नहीं कि डॉक्टर ने कहा तुम कैंसर से मर रहे हो, मनुष्य को बस इतना ही पता है, हो सकता है आज रात आप में से कुछ लोगों के लिए पानी गहरा हो, लेकिन याद रखें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और परमेश्वर अपने वचन को साबित करता है, ये सच्चाई है। वो तब तक रुका रहा जब तक पानी गंदा नहीं हो गया, जब तक कि वे गहराई में नहीं चले गए और उनके सिर के ऊपर तक नहीं पहुंच गया और इत्यादि। और फिर उसने मार्ग को खोल दिया, वह उनके आगे आगे गया और मार्ग को बनाया। वे कैसे वहाँ येरियो में प्रवेश करेंगे जबकि यह पूरी तरह बंद हो गया था? यहोशू सोच रहा था, वह जानता था कि परमेश्वर ने उसकी इतनी दूर तक अगुवाई की है, तो अगला कदम परमेश्वर का है। एक दिन जब वो बाहर घूम रहा था, दीवारों की ओर देख रहा था, उसने एक व्यक्ति को अपनी तलवार को बाहर निकाले हुए खड़ा देखा और यहोशू ने अपनी तलवार बाहर निकाली और उस व्यक्ति के सामने चला गया। उसने कहा, तू किसकी ओर है? क्या तू हमारे साथ है या तू हमारे शत्रु की ओर है? उसने कहा, मैं प्रभु की सेना का कप्तान हूँ। और उसने उसे बताया कि उसे क्या करना है, वह किस तरह से एक तुरही को फूकेगा और एक दीवार नीचे गिर पड़ेगी जिस दीवार के ऊपर वे एक रथ को दौड़ा सकते थे। भला इसका उस एक तुरही से क्या लेना देना है? परमेश्वर ऐसी साधारण सी विधियों का उपयोग करता है। यह ऐसा ही है, इसकी साधारणता मेरे लिए उसे परमेश्वर बनाती है। हम हमेशा किसी बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं जो कुछ तो बड़ा करेगा, और परमेश्वर कोई तो बड़ा संगठन आकर इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लेगा और इसे साफ कर देगा। जबकि परमेश्वर एक साधारण से व्यक्ति को लेता है, केवल एक मनुष्य जिसे वो अपने हाथों में ले सकता है, और वह उसके द्वारा कहे गए हर एक वचन को साबित करेगा। ऐसे ही साधारण सी छोटी छोटी विधियों को लेता है। तुरही को फूकना, न ही दीवार को खोदना, लेकिन बस एक तुरही को फूकना और दीवारें नीचे गिर जाएंगी। तुरही की तेज आवाज दीवारों को नीचे गिरा देंगी। सांसारिक मन के लिए यह कितनी मूर्खता की बात है, लेकिन परमेश्वर ने साबित किया कि उसका वचन सच्चा है, क्योंकि दीवारें गिर गई एक के ऊपर एक। उन्होंने सीधे जाकर चढ़ाई की और उन्होंने नगर पर अधिकार कर लिया। ओह, परमेश्वर स्वयं को परमेश्वर साबित करना पसंद करता है। यहोशू यह जानता था एक दिन, और जब वो वहाँ पर खड़ा था तो अब तक की एक सबसे बड़ी अविश्वसनीय लेकिन सत्य बात घटित हुई। यीशु मसीह की मृत्यु, काटे जाने और पुनरुत्थान को छोड़कर, जब वो शत्रु उसने उन्हें परास्त कर दिया था और विभिन्न सेनाएं पहाड़ों में थी, उसने उन्हें परास्त कर दिया था और सूर्य अस्त हो रहा था। ओ प्रभु, सेनापति यहोशू के लिए क्या ही समय था। याद रखें, उसने उस देश के लिए लड़ाई लड़ी बिना किसी अस्पताल के, एक नर्स के, एक प्राथमिक उपचार के या एक घायल व्यक्ति के। मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो उसका मुकाबला कर सकती है। जी हाँ श्रीमान, उसके पास कभी भी कोई अस्पताल नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, और उसने कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं खोया जब तक वे प्रभु की इच्छा में और उसके वचन में चले। परमेश्वर ने साबित किया कि वो उनके साथ था, ये सही है। अब ध्यान दें, और हम पाते हैं कि यहोशू जानता था यदि रात हो गई तो वे इधर उधर छिप जाएंगे और एक दूसरे के साथ हो जाएंगे और अपने आप को एक साथ करके और एक और बड़ी सेना को बना लेंगे, और अगले दिन पर उन्हें उनके साथ कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने परमेश्वर की ओर देखा। उसे सहायता की आवश्यकता थी और उसे उस सूर्य की आवश्यकता थी कि ठहर जाए, इसलिए उसने बस उस सूर्य को रुके रहने की आज्ञा दी और कहा कि चंद्रमा अजालोन के ऊपर ठहरा रहे। जब तक उसने आज्ञा नहीं दी तब तक ये नहीं हिले, और चंद्रमा और सूर्य 24 घंटे तक वहीं पर रुके रहे जब यहोशू ने लड़ाई लड़ी और शत्रुओं पर जय को पाया, क्योंकि वह ठीक अपने कर्तव्य की पंक्ति में था। उसके पास ऐसा करने का अधिकार था क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। और जब तक आप अपने कर्तव्य की पंक्ति में होते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे होते हैं, वही करते हैं जो उसने आपको करने के लिए कहा है, परमेश्वर के आदेश के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपके पास उस पहाड़ से कहने का अधिकार है, हट जा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा, अपने हृदय में संदेह न करो, लेकिन विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वो पूरा होगा, तुम्हारे पास वो हो सकता है जो तुमने कहा है। यीशु ने ऐसा कहा, संत मरकुस 11:22 में, यही सत्य है, मैं जानता हूँ कि यही सत्य है। यह परमेश्वर का वचन है और यह साबित करता है कि यह सत्य है। हम बस कभी कभी डरते हैं, हम एक स्थान पर पहुँचते हैं, हम डरते हैं कि वो उस वचन को पूरा नहीं करेगा, वो अपना वचन पूरा करेगा। उसने कहा कि वो इसे करेगा। अब हम पाते हैं कि यह सच है, उसने इसे साबित किया। यशाया की भविष्यवाणी, एक बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ था और तब से लेकर कभी नहीं हुआ, उसने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, क्या आप एक स्त्री की कल्पना कर सकते हैं बिना किसी पुरुष को जाने उसके पास एक बालक होगा? यशायाह ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और परमेश्वर ने कुंवारी को गर्भवती किया ताकि उसके वचन को सत्य साबित करे। उसने अपने वचन को साबित किया क्योंकि एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया। अब वो वचन देहधारी हुआ। देखो उसने क्या किया, जब वो पुत्र आया तो वह स्वयं ही वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वह वो जीवित वचन था। उसने साबित किया कि वही वो जीवित वचन था। उसने उस समय के उन शिक्षकों से कहा, कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहरा सकता है? पाप अविश्वास है। कौन मुझे बता सकता है कि मैं एक अविश्वासी हूँ? हर एक वचन जो मेरे लिए लिखा गया है पूरा हुआ है। उसके जीवन की अंतिम सात भविष्यवाणियाँ क्रूस पर अंतिम सात घंटों में पूरी हुई। हर एक चीज जो उसके विषय में लिखी गई थी वो पूरी हुई क्योंकि वो वचन था। उसने साबित किया कि वो था, वही था। उसने बीमारों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने मृत्यु, अधोलोक और कब्र पर जय को पाया। उसने साबित किया कि वो वचन था। इस मामले पर ध्यान देना, यहाँ याईर के घर पर वो उसने उन्हें सच को बताया था। हम उसे देखते हैं जब उसने समुन्दर को पार किया, वो वहाँ पर आता है। वहाँ ऊपर पहाड़ी पर एक छोटी सी महिला थी जिसने अपना सारा पैसा डॉक्टरों पर खर्च कर दिया था। कोई संदेह नहीं, डॉक्टरों ने वो सब किया जो वे जानते थे कि कैसे करना है जिससे कि महिला को ठीक कर सकें। शायद वे इब्रानी डॉक्टर थे और वह एक इब्रानी महिला थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया था जो वे कर सकते थे। हालांकि उनके पास इस लहू की बीमारी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, जो कि हो सकता है एक रजोनिवृत्ति का समय था और उसका लहू बहता ही जा रहा था। इतना तक कि वो छोटी सी स्त्री इतनी कमजोर हो गई थी कि मुश्किल से अब और अधिक इधर उधर नहीं चल पाती थी। और उसने यीशु के विषय में सुना था, और जब उसने छोटी नाव को पानी के पास की झाड़ियों में धकेलते हुए देखा तो वो पता लगाने के लिए वहाँ नीचे गई। उसके बहुत से आलोचक वहाँ खड़े हुए थे और आज भी वो उन आलोचकों से मुक्त नहीं है। यदि वे जान जाते कि वो कौन था तो वे उसके आलोचक न रहे होते, लेकिन वे उसके आलोचक थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो कौन था। और आज के संदेश के साथ इसी तरह से है। बहुत से अच्छे पुरुष और महिलाएं इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि यह क्या है। यीशु ने कहा, यदि तुम मूसा को जानते होते तो तुम मुझे भी जानते। मूसा ने मेरे विषय में बात की। बहुत से महान लोगों ने इस दिन को देखने की इच्छा रखी। यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो। मेरे पास और भी बड़ी गवाही है। उसने कहा, यूहन्ना की तुलना में जो काम मैं करता हूँ उनसे यह साबित होता है कि पिता मेरे साथ है। उसने बढ़कर काम किए थे क्योंकि उसकी पहचान हुई थी। यूहन्ना की भी पहचान जंगल में पुकारने वाले की आवाज के रूप में हुई थी, लेकिन जब वो आया तो वह भविष्यवक्ता था जिसके विषय में मूसा ने बोला था कि वह उठ खड़ा होगा। जैसा कि मैंने पिछली रात को कहा, वह तीन नामों में आया, परमेश्वर के पुत्र के नाम में, मनुष्य का पुत्र और दाऊद का पुत्र। जब वो यहाँ धरती पर था पहली बार, वो मनुष्य का पुत्र था, तब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता था। उसने कभी ऐसा होने का दावा नहीं किया। उसने कहा कि वो मनुष्य का पुत्र था। जब कोई भी उससे प्रश्न करता उसने कहा, तुम मनुष्य के पुत्र को देखते हो, मनुष्य का पुत्र। अब मनुष्य का पुत्र एक भविष्यवक्ता होता है। उसे उसी तरह से आना था क्योंकि वो वचन वह उस वचन के विपरीत नहीं आ सकता है। इसी कारण आज जो कि हमारा इस समय का संदेश है, धर्म ज्ञानियों और धर्म ज्ञान के जरिए से नहीं आ सकता है। इसे उसी चीज पर वापस आना है जिसकी इसे करने की प्रतिज्ञा की गई है। इसे इसी तरह से होना ही चाहिए। इसलिए हम पाते हैं कि इस मनुष्य में उसे एक भविष्यवक्ता होना था, न ही वहाँ परमेश्वर का पुत्र, उसे मनुष्य का पुत्र होना था। यहोवा ने स्वयं उन भविष्यवक्ताओं को ऐसा कहकर बुलाया, यर्मिया, और उन्हें, हे मनुष्य के पुत्र, जब तुम मनुष्य के पुत्र को देखते हो, मनुष्य का पुत्र कौन है, वे पूछते रहे। तब उसने मनुष्य के पुत्र के रूप में अपने कार्य को किया। उसके बाद उसने अब परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपना कार्य किया। परमेश्वर एक आत्मा है, और अब जबकि उसने कलीसिया युगों में से होते हुए परमेश्वर के पुत्र के रूप में कार्य किया, अब सहशताब्दी में वो दाऊद का पुत्र होगा। जब वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, वो सिंहासन का वारिस होगा। दाऊद का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। और ये हर समय वही मनुष्य है, ठीक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह। परमेश्वर का कार्य स्थान, वो परमेश्वर पिता था, फिर वो परमेश्वर पुत्र बन गया, अब वो परमेश्वर पवित्र आत्मा है। ना ही तीन परमेश्वर, एक परमेश्वर, तीन प्रगटीकरण, एक ही परमेश्वर के तीन गुण अब हम पाते हैं। और इस समय में जिसमें हम अब रह रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन को ठीक वैसे ही पूरा करता है जैसे उसने तब किया था। हम पाते हैं कि वो समुन्द्र को पार करके आया था। इस महिला ने उस पर विश्वास किया, उसके भीतर कुछ तो था जो जोर से उमड़ने लगा। उस स्त्री के पास इसके लिए कोई वचन नहीं था, कोई भी वचन नहीं था, जैसे यहोशू के पास सूर्य को रोकने के लिए कोई वचन नहीं था। लेकिन उस स्त्री ने अपने हृदय में विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसने कहा, यदि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए वह भीड़ में से होते हुए जोर लगाती रही जब तक कि उसने उसके वस्त्र को नहीं छू लिया और लहू बहना बंद हो गया। अब उसने श्रोतागण की ओर देखा यह देखने के लिए कि किसने उसे छुआ। कोई संदेह नहीं, वहाँ कोई तो था। वह रुक गया। वे सारे लोग जो उसके पास भीड़ लगा रहे थे और कुछ लोग उसका उपहास उड़ा रहे थे, कुछ उस पर हंस रहे थे। याजक खड़ा होकर और उससे प्रश्न कर रहा था और पादरीगण और इत्यादि लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। और थोड़ी देर के बाद वह रुक गया। अचानक से पीछे मुड़कर उसने कहा, किसने मुझे छुआ? उनमें से कुछ ने कहा, क्यों गुरु, मैं सोचता हूँ कि ऐसा पतरस ने कहा था। क्यों सारी भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है? क्यों किसने तुझे छुआ? क्यों हर कोई तो तुझे छू रहा है। तो उसने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझ में से सद्गुण बाहर निकला है, वह कमजोर हो गया। यह एक अलग प्रकार का स्पर्श था। यदि हम केवल यही देख पाते भाइयों बहनों, काश आप उसे उस विशेष स्पर्श से छू सकते। ओ बीमार लोगों, मैं बस कुछ ही मिनटों में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, उतना ही पवित्र आत्मा जितना तुम्हारे पास ठीक वहाँ पर है, जितना इन लोगों के पास यहाँ है, वही पवित्र आत्मा। लेकिन यह परमेश्वर की एक आज्ञा है, और यदि आप विश्वास करेंगे कि यह परमेश्वर की आज्ञा है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना और उन पर हाथ रखना और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना, और जो प्रतिज्ञाएं उसने की है, यह आपके साथ भी उसी चीज को करेगा। आपको वही मिलेगा जो आप मांगते हैं, यदि आप इसका विश्वास कर सकते हैं। क्या तुम ये विश्वास कर सकते हो कि मैं इसे कर सकता हूँ? यीशु ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। मिर्गी से पीड़ित बच्चे के साथ वाले व्यक्ति ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो संसार में आने वाला था। अब हम जानते हैं कि ये परिणाम को लाने के लिए केवल उस दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। अब जल्दी से आइए कुछ क्षण के लिए उसके बारे में सोचें। यहाँ वह अपने मार्ग पर आगे की ओर जा रहा है, एक छोटा याजक वहाँ पर आया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वह छोटा व्यक्ति एक सीमा रेखा का विश्वासी था। आज संसार में उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे से सीमा रेखा के विश्वासी हैं। वे इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं, वे विश्वास करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा वास्तविक है। वे विश्वास करना चाहते हैं कि यह वही प्रेरितों की गतिविधि है जैसा कि परमेश्वर ने अंत के दिनों में प्रतिज्ञा की है कि वह अपनी आत्मा को ढीलेगा। हम वो मलाकी चार पर विश्वास करना चाहता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, अंत के दिनों में उस मूल पेंटिकॉस्टल विश्वास को कलीसिया में फिर से वापस लौटाएगा। मलाकी चार इसका दावा करता है, देखो मैं तुम्हारे पास अंत के दिनों में एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा। यह सही है, और वो बच्चों के विश्वास को पूर्व पिताओं की ओर वापस फेरेगा। देखो पूर्व पिताओं का विश्वास भी बच्चों की ओर, देखो ऐसा होना ही है। आप कहते हो तो ठीक है, वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। नहीं नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी तीन था। यह सही है, मती 11 ऐसा कहता है, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो तो यह वही है जिसके विषय में बोला गया, देखो मैं अपने संदेश वाहक को अपने आगे आगे भेजता हूँ। यह निश्चित रूप से एलिया था। यीशु ने कहा यह था, लेकिन वह बिल्कुल भी मलाकी चार का एलिया नहीं था, क्योंकि उस संदेश के तुरंत बाद धरती आग से जलकर भस्म हो जाएगी और धर्मी जन दुष्टों की राख पर चलेंगे। इसलिए यूहन्ना के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें एक संदेश को वापस लाना होगा और लोगों को इन सभी सांप्रदायिक परिस्थितियों में से बाहर निकालना होगा, वापस मूल वास्तविक पेंटिकॉस्टल विश्वास की ओर। और हम इसे घटित होते देख रहे हैं। यह उस वचन को पूरा कर रहा है जिसका पूरा होना निश्चित है। हर एक वचन अवश्य ही पूरा होगा। हम इसमें से कितने और अधिक वचन को लागू कर सकते हैं, यह मुझे अब दिखाने के लिए मेरे समय से अधिक समय लग जाएगा। लेकिन आप इन बातों को समझते हैं कि इसे बिल्कुल ठीक इसी तरह से होना है अब्राहम की संतान के लिए जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है। हम देखते हैं कि यीशु अब उस छोटी लड़की को चंगा करने के लिए वहाँ जा रहा है, क्योंकि पिता सीमा रेखा का छोटा सा विश्वासी था। वो कुछ तो एक ऐसे स्थान पर आया कि उसे यीशु को पहचानना था, तो डॉक्टर ने उस लड़की को छोड़ दिया था और वह अपनी छोटी काली टोपी पहनकर यह पता लगाने निकल गया कि कहीं उसे यीशु मिल जाए। देखो, जब भी आपको उसकी आवश्यकता होती है, वह हमेशा ही ठीक वहाँ पर होता है। उसने उसे किनारे पर आते हुए पाया और उसने कहा, मेरी छोटी लड़की के पास आकर उस पर अपना हाथ रखिए और वह चंगी हो जाएगी। कहा, वह मरने के कगार पर पड़ी हुई है, वह मेरी इकलौती संतान है। कहा, वह 12 वर्ष की है, हमारी और कोई संतान नहीं है, पत्नी और मैं शायद बूढ़े हो रहे हैं और यही हमारी इकलौती बच्ची है और वह मरने के कगार पर पड़ी हुई है। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, यदि आप आकर उस पर हाथ रखें तो वह चंगी हो जाएगी। देखो, उसने किस बात को पहचाना? उसने पहचान लिया कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन इस मनुष्य में प्रकट हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे निकोदेमुस ने कहा, रब्बी, गुरु, हम जानते हैं कि तू एक गुरु होकर परमेश्वर के पास से आया है, हम इसे जानते हैं। फरीसी से जानते हैं, उन्होंने इसे क्यों नहीं स्वीकार किया? कोई भी मनुष्य उन चीजों को नहीं कर सकता है जो तू करता है जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के पास से आया है। यहाँ हम पाते हैं कि याइर ने उसी बात का विश्वास किया। उसने कहा, आकर अपना हाथ रखें। वह जानता था कि परमेश्वर उसमें था। अपने हाथ को मेरी बच्ची पर रखें। भले ही वह मृत्यु के कगार पर हो, वह जिएगी। वह बस उसके साथ साथ चलता रहा और जब वो जा रहा था, यहाँ एक दौड़ता हुआ व्यक्ति आता है और कहा, उसे परेशान मत करो, गुरु को और अधिक परेशान मत करो, वो लड़की मरी हुई है, वो अब चली गई है, वो गुजर गई है। यीशु ने याइर की ओर मुड़कर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम केवल विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे? यदि तुम केवल इसका विश्वास करोगे। वह कमरे में गया और वहाँ पर वे थे, सभी शोक कर रहे थे और रो रहे थे और विलाप कर रहे थे, बस जैसे कोई भी व्यक्ति करता है। एक अच्छी छोटी लड़की, एक पास्टर की बेटी मर गई थी और उसे इस संसार से बाहर उठा लिया गया था और वह शायद घंटों से मरी हुई थी और फिर उन्होंने उसे खाट पर लिटा दिया था और शायद उसके शरीर पर लेप लगाने के लिए तैयार थे और उसे दूर रख दिया था और दफनाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यीशु चलकर घर में आया। वे सब विलाप कर रहे थे। वो कहता है, शांति रखो। उसने कहा, वो मरी नहीं है लेकिन वो सो रही है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा होगा? क्यों इस व्यक्ति को, अब हम जानते हैं, हम जहाँ तक समझते हैं कि वो एक अवैध संतान है और हम उसके विषय में सुनते हैं उसकी सारी बेतों की भविष्यवाणियाँ जो वो करता है, और अब हम जानते हैं कि याजक सही है, ये व्यक्ति पागल है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मर चुकी है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है और वो वहाँ पड़ी है, वो चली गई है और हम जानते हैं कि वो मर चुकी है। उन्होंने कहा, वे उसका तिरस्कार करने के लिए हंसे। दूसरे शब्दों में, उसकी आलोचना करने के द्वारा उसे शर्मिंदा महसूस कराया, लेकिन उसने इतना ही कहा था कि वो मरी नहीं है, बस इतना ही काफी है, वो सो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी आलोचना हो, वह अपने वचन को साबित करने जा रहा है। उसने उन सबको घर से बाहर कर दिया, सभी अविश्वासियों को दूर कर दिया। पतरस, याकूब और यूहन्ना को अंदर लिया जो विश्वासी थे, तीन गवाह और पिता और माता को लेकर अंदर जाकर और बेटी के हाथ को पकड़ा और एक ऐसी भाषा में बोला जो उसके प्राण को कहीं तो उस और अनंतता में से वापस बुलाया और लड़की जीवित रही। उसने क्या किया? उसने अपना वचन साबित किया। उसने जो कहा उसे साबित किया। वो मरी नहीं थी, वह सो रही थी। अब हम पाते हैं कि ऐसा करते हुए और समझते हुए उसने वहाँ कुछ तो और बात को भी साबित किया। अब उसने साबित किया कि वह परमेश्वर था। उसने साबित किया कि उसके पास पूर्व ज्ञान था। देखो, उसका वचन अब क्या कहता है? वह मरी नहीं है लेकिन वह सो रही है। देखो, पहले से ही वह मरी नहीं थी, वह सो रही थी। उसने अपने पूर्व ज्ञान को दिखाया। अब हो सकता है कि उसी सुबह बहुत सी छोटी युवा लड़कियां मर गई हों, लेकिन यह एक मरी नहीं थी, वह सो रही थी, जैसे लाजरस सो रहा था, और उसने उसे उस नींद में से जगाया, क्योंकि वह मरी नहीं थी। और वह जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा, और जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। केवल वे लोग जो मेमने की जीवन की पुस्तक में हैं, जिन्हें उसने छुड़ाया, जब वो मरा। यही है जिसे वो उस दिन पर उस नींद में से बाहर बुलाएगा, जो लोग उसकी सामर्थ के द्वारा जिलाए गए हैं, जिनके पास उनमें जिलाने वाली सामर्थ है। जैसा कि मैंने पिछली रात को कहा था, यहाँ तक कि एलिशा के मरने के बाद और उसकी हड्डियाँ कब्र में पड़ी हुई थी, वो जिलाने वाली सामर्थ अब भी उसकी हड्डियों पर थी। निश्चय ही उसने साबित कर दिया कि वो कौन था। अब हम फिर से पाते हैं इसी तरह उसने यह भी साबित किया कि इब्रानियों के चौथे अध्याय और 12वें पद में उसने साबित किया कि वो परमेश्वर का वचन था। उसने निश्चय ही साबित किया। ध्यान दीजिए उसने क्या किया। इब्रानियों 4:12 कहता है कि परमेश्वर का वचन अधिक सामर्थी है। एक दो धारी तलवार से भी तेज, और यह विचारों और हृदय के इरादों को भी जांचता है। अब कुछ क्षण के लिए ध्यान देना, जब उसने पहली बार अपनी सेवकाई को आरंभ किया, उसके बाद वह यह दिखाने के लिए सामने आया कि वो वचन था। जब वो जंगल से अपनी परीक्षा में से बाहर आया, तो वहाँ पतरस नाम का एक मनुष्य था। उस समय उसका नाम शमौन था, और वह अपने भाई अंद्रियास के साथ यीशु के पास आया। और जैसे ही वह यीशु मसीह की उपस्थिति में चलकर गया, यीशु ने कहा, तेरा नाम शमौन है और तेरे पिता का नाम योना था। अब आगे से तेरा नाम पतरस बुलाया जाएगा। इससे यह साबित हुआ कि वो वचन था, क्योंकि वचन विचारों और हृदय के इरादों को परखता है। वो वचन था। फिलिप्पुस ने इसे होते हुए देखा। वो पहाड़ के पास घूमने निकल पड़ा। एक दिन बीत गया और वो वापस आ गया, और वो अपने साथ एक मित्र को लेकर आया जिसका नाम नतानियल था, और उसने कहा, ये बातें सचमुच घटित हो रही हैं। मूसा ने कहा था, प्रभु हमारा परमेश्वर उसके समान एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा, और यहाँ पर वो मनुष्य है, क्योंकि उसने शमौन को बताया कि वह कौन था, यहाँ तक कि उसका पिता कौन था। और हम जानते हैं कि वह जो कहता है वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे वचन में कहा है। और यहाँ यह साबित होता है कि उसे ऐसा करना था, और इससे साबित होता है कि यही वो मसीहा है। और जब वो उसकी उपस्थिति में आया, यीशु ने उससे कहा, देखो एक इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। उसने कहा, रब्बी तुम मुझे कब से जानते हो? कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बुलाता, जब तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। उसने अपना वचन साबित किया, उसने परमेश्वर का वचन साबित किया, उसने साबित किया। वो स्त्री जो कुएं पर थी जब उसके पास, तो ठीक है, उसने उससे कहा कि उसे उस घड़े से पानी पिला दे जिससे वह कुएं से पानी निकाल रही थी। और उसने कहा, यह तुम यहूदियों के लिए रीति के अनुकूल नहीं है कि हम सामरी स्त्रियों से इस प्रकार की चीज मांगे, क्योंकि हमारा कोई व्यवहार नहीं होता है। उसने कहा, लेकिन यदि तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, तो तुम मुझसे पानी मांगती। उसने कहा, कुआ तो गहरा है, और बातचीत जैसे जैसे यह आगे बढ़ी, अंत में उसे पता चल गया कि उसकी परेशानी क्या थी, और उसने कहा, जाकर अपने पति को यहाँ लेकर आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा, तूने सच कहा है, क्योंकि तेरे 5 पति हैं, और जिसके साथ तू अब रह रही है वो तेरा पति नहीं है। क्यों? उसने कहा, श्रीमान मुझे ऐसा लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। वह हमारे पास 400 वर्षों से एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, आप जानते हैं। कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। अब हम जानते हैं कि जब मसीह आता है, जिसे मसीह कहा जाता है, जब वो आता है तो वो हमें इस प्रकार की बातें बताएगा। यही उसका चिन्ह होगा। जब उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ, उसने अपने वचन को साबित किया। हम साबित करते हैं जो उसने होने का दावा किया, वह मसीहा था, परमेश्वर का पुत्र। अब हम यह भी पाते हैं कि यह छोटी स्त्री जिसे यह लहू बहने का रोग था, जिसने उसके वस्त्र को छुआ था, इस बात से उस स्त्री के लिए यह भी साबित हो गया कि वह परमेश्वर का वचन था। अब याद रखना, आज रात यीशु ने कहा, इसके अलावा इब्रानियों 1 में, इब्रानियों का 3रा अध्याय मैं सोचता हूँ कि इसी में है, उसने कहा कि वो अब एक महायाजक है, ये युग जिसमें हम अब रह रहे हैं। एक महायाजक स्वर्ग में परमेश्वर के वैभव में बैठा हुआ है, जिसे हमारी दुर्बलता के भावना के द्वारा छुआ जा सकता है। इब्रानियों 13:8 में कहा, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो वही परमेश्वर है जो तब था, वो आज रात भी वैसा ही है। संत यूहन्ना 14:12, उसने कहा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह इससे भी अधिक करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। देखा, वह जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। मत्ती 28 में उसने कहा, थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे फिर न देखेगा तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जगत के अंत तक भी तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। आज रात वो अपने वचन को साबित करने के लिए खड़ा है। मेरा समय हो चुका है, लेकिन उसने साबित किया कि वह कर सकता है। उसने तब अपने वचन को साबित किया जो उसने उस दिन के लिए प्रतिज्ञा की थी। उसने यशाया के शब्दों को साबित किया, उसने नूह के शब्दों को साबित किया, उसने मूसा के शब्दों को साबित किया, उसने भविष्यवक्ताओं के हर एक शब्द को साबित किया। उसने प्रतिज्ञा की है कि इस दिन में, जिस दिन में हम रह रहे हैं, कि संसार सदोम की स्थिति में होगा, समलैंगिक। अब आज संसार में इसे देखें, सारे संसार में जहाँ जहाँ मैं यात्रा करता हूँ, केवल यहाँ ही नहीं, हर कहीं, यह बहुत गंभीर बात है। स्वीडन में युवा पुरुष और महिलाएं बिल्कुल नग्न अवस्था में बर्फ में फिसलते हैं, और वे जर्मनी में, फ्रांस में और अन्य सभी जगहों पर। यह लगभग एक प्रकार का कूड़ा करकट है जो हमारे पास यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह एक युग है। मैं, यदि मुझे कभी वापस आने का मौका मिलता है, तो मैं आपसे कुछ भविष्यवाणियों की बातों पर बोलना चाहूँगा, आपको यह दिखाने के लिए कि हम किस युग में रह रहे हैं। बाइबल ने कहा कि बच्चे अपने माता पिता पर अधिकार करेंगे, वचन। लेकिन याद रखें, अब्राहम का एक बीज था, जो बीज इसहाक था। सारा की मृत्यु के बाद उसके और भी बीज हुए, और वह 145 वर्ष का था। उसने दूसरी स्त्री से विवाह किया, उसके बेटियों के अतिरिक्त उसके 7 बेटे हुए, क्योंकि जब वह 100 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे फिर से एक जवान पुरुष बना दिया था। वह तब फिर से केवल 45 वर्ष का था, इसलिए तब वो, हम ये जानते हैं, मैंने वर्षों पहले आपको यहाँ कैलिफोर्निया में प्रचार किया है। और अब हम समझते हैं कि अब्राहम का बीज सारा के द्वारा जन्मा हुआ शारीरिक रीति से आया हुआ बीज नहीं था, जो इसहाक था, जिसने एक राष्ट्र को बनाया, लेकिन शाही बीज उस प्रतिज्ञा के द्वारा आया था, जो यीशु मसीह था। और उस बीज के द्वारा उसने एक शाही बीज को खड़ा किया। ओह प्रभु, अब हम एक शाही याजक गण हैं, एक शाही राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर को स्तुति देते हुए, उसके नाम को स्तुति देने वाले, हमारे होठों का बलिदान। परमेश्वर ने अपने वचन को साबित किया, उसने हम पर पवित्र आत्मा को ढेल दिया। उसने कहा, जैसा सदोम के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में होगा। अब क्या आपने ध्यान दिया, परमेश्वर के पुत्र से, दाऊद का पुत्र बनने से ठीक पहले वह स्वयं को फिर से मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। क्या आपने वचन पर ध्यान दिया, क्योंकि वह हमेशा ही करता है, वह कभी भी कुछ नहीं करता है जब तक कि वह अपने सेवक भविष्यवक्ताओं को नहीं बताता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही है जो उसकी प्रतिज्ञा थी, समझे। वह कभी कुछ नहीं करता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वह हमेशा ही इसे करने से पहले इसे प्रकट करता है। आज हम जिस स्थिति में हैं, उसकी ओर देखें, देखिए कि हम कहां पर हैं। आप में से हर एक जन स्वीकार करेगा कि हम एक आधुनिक सदोम में हैं। आप जानते हैं कि यह देश इसी बात के लिए तैयार है, वहां ये आशाओं से परे है, वहां इस राष्ट्र के लिए या कोई अन्य राष्ट्र के लिए उद्धार नहीं बचा है। अब हम उससे परे जा चुके हैं। वे भविष्यवाणियां जिन्होंने इस विषय में भविष्यवाणी की है, वे पूरी हो गई हैं। परमेश्वर अपनी अंतिम छोटी भेड़ को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, एक दिन सब भीतर आ जाएंगे। हम अंतिम समय में हैं। स्थिति के अनुसार देखें, मैं आपसे पूछता हूं, बस एक भाई या बहन के रूप में, इससे पहले कि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हम बस कुछ क्षण के लिए और अधिक विश्वास को बढ़ाएं, और मैं जानता हूं कि हमें किसी नियत समय पर नहीं निकलना है, लेकिन मैं प्रार्थना पंक्ति को शुरू करना चाहता हूं। तब आप जो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, समझे। आप जो प्रार्थना पंक्ति में बने रहना चाहते हैं वे रुक सकते हैं, लेकिन अब मुझे बस एक भाई के रूप में बस कुछ क्षण के लिए आपको कुछ तो बताने दें। यीशु को देखो, लूका 17:30 में देखिए, जब वो वहाँ अंत समय के विषय में बोल रहा था कि वे किस तरह से नूह के दिनों के समान होंगे, तब उसने कहा, और इसी प्रकार से जैसे सदोम के दिनों में कहा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। फिर से मनुष्य का पुत्र, ना ही परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। देखो, जो मलाकी 4 को फिर से वापस लाता है, ठीक सीधा वापस, ये सारी दूसरी भविष्यवाणियां पूरी होती चली आ रही हैं, ठीक वैसे जैसे उन्हें होना चाहिए था। वह अपने वचन को सच साबित करता है। यह सही है। और ध्यान दे, ऐसा करते हुए वह किस तरह से अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलने जा रहा है और क्या बात जगह लेने जा रही है, किस तरह लौटाया जाना वापस आएगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपने दास और दासियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और मैं ऊपर आकाश में चिन्ह दिखाऊंगा। मुझे यहाँ भाई ली वेल से आई हुई एक तस्वीर मिली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस दिन पहाड़ पर किस बात ने जगह ली। जब सभी स्कूल के बच्चे बाहर आ गए थे, ठीक उससे पहले जब सात मोहरों के खुलने का यह महान विषय सामने आया, जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई, मैं वहाँ ऊपर प्रार्थना कर रहा था, तभी एक आग की लपट भंवर के समान नीचे आई, फिर वापस ऊपर की ओर चली गई और विस्फोट हुआ और घूमकर फिर से नीचे उतर आई। यही वो बात थी जो उसने लोगों को जाकर बताने के लिए कही। हम वहाँ यह है जहाँ टूसान के स्कूल और जहाँ यह ऊपर हवा में चला गया और विज्ञान ने तस्वीरें ली और इत्यादि और उसके बारे में सवाल किए। उन्होंने कहा यह कहाँ पर है, क्या हुआ, वे इसे समझ नहीं सकते हैं। देखो ओह, इसे किसी गुप्त कोने में नहीं किया गया, केवल लोगों की चेतना अंधी हो गई है। यह कभी नहीं, यीशु जब वो यहाँ धरती पर था तो वहाँ लाखों लोगों को पता ही नहीं था कि वो धरती पर है। जी हाँ, आज लाखों लोग होंगे जो इसे नहीं समझेंगे, उनमें से लाखों लाख लोग, लेकिन वहाँ होंगे उनके लिए जिनके लिए इसे भेजा गया है, वे इसे समझेंगे। उस दिन बुद्धिमान लोग अपने परमेश्वर को जान लेंगे और वे बड़े बड़े काम करेंगे। हम यह अनुभव करते हैं वह घड़ी जिसमें हम अब रह रहे हैं। अब सदोम की ओर देखो, देखो क्या हुआ। उसने कहा जैसा सदोम के दिनों में हुआ था, वहाँ लोगों का एक झुंड था जो एक प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था। हम यह विश्वास करते हैं वह अब्राहम और उसका झुंड था। वहाँ एक गुनगुना झुंड था, लूत आधा पिछड़ा हुआ फिर भी एक विश्वासी, नीचे सदोम में तीन वर्ग के लोग, हमेशा ही वे तीन वर्ग होते हैं, हाम शेम यपेत के लोग, साथ ही विश्वासी, ढोंगी विश्वासी और अविश्वासी, वे हर जगह हैं और हम उन्हें हर झुंड में पाते हैं और आप उन्हें हर कहीं पा सकते हैं और वो झुंड अभी भी यहाँ मौजूद है। आपको इसका विभाजन समझना होगा, आप इसे सीधे वचन में से देख सकते हैं, बस सारी बातें एकदम मेल खाती हैं। इसे ध्यान से सुनना। देखो आज रात हम स्थिति के अनुसार भविष्यवाणी की दृष्टि से कहां पर खड़े हैं। अब हम में से हर एक जन जानता है कि संसार एक सदोम की स्थिति में है। हम जानते हैं कि इज़राइल के विषय में सारी भविष्यवाणियां ये अपने देश में हैं। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर जानना चाहते हैं कि हम कहां खड़े हैं, तो इज़राइल को देखें, वो कहां पर हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कलीसिया की क्या स्थिति है, तो देखें कि स्त्रियां किस तरह से व्यवहार करती हैं, वो कलीसिया है, उसे देखना अनैतिक अशोभनीय। देखना, देखो कि कलीसिया कहां पर है, बस इस पर ध्यान दें। देखो देखो, बस स्त्रियों पर ध्यान दें। आप देखते हैं आपकी महिलाएं किस तरह से नीचे गिर गई और बहुत दूषित हो गई हैं, इसी तरह से आपकी कलीसिया है। देखो वो नमूना है। देखो कि इज़राइल कहां पर है, आप समय को देखकर हिसाब लगाते हैं कि हम कहां पर हैं। देखो बस उन चिन्हों और अद्भुत कामों को देखो, यदि आप या यदि आपकी आंखें खुली हैं, तो देखें कि हम कहां पर हैं। अब स्थिति के अनुसार देखें कि हम कहां स्थापित हो रहे हैं। संसार एक सदोम की स्थिति में है। अब ध्यान दें जैसा उस समय था, अब ध्यान दें उस दिन में कोई तो था जो आने वाले प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, अब्राहम और सारा। वे अब्राहम के झुंड में प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सदोम में नहीं थे, लेकिन अभी इस समय पर घटना का अंतिम अध्याय, प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से ठीक पहले वहाँ तीन मनुष्य स्वर्ग से नीचे आए, एक दूत, दो दूत और परमेश्वर, और वे नीचे आए और अब्राहम के साथ बातें की उस बतूल के पेड़ के नीचे। क्या ये सही है? और उनमें से दो जन सदोम में नष्ट हो गए और नगर के पापों के विरुद्ध चिल्लाने लगे, और ऐसा अन्य जातियों के संसार के जलने से ठीक पहले था। उस समय पर, उस समय तब पूरा सदोम नष्ट हो गया, बस कुछ ही लोग बाहर निकाले गए, लूत और उसकी दो बेटियां, यहां तक उसकी पत्नी भी वहां नहीं पहुंच पाई, वह पीछे मुड़ी। मैं अभी आपको यह दिखाने के लिए समय निकालना चाहता हूं कि आपको ठीक अभी यह दिखाऊं कि वो कलीसिया उस स्थिति में कहां खड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप अब इस पर ध्यान दें। और एक मनुष्य पीछे रुक गया जिसने अब्राहम से बात की और उसने अब्राहम को एक चिन्ह दिखाया, और देखो अब्राहम ने परमेश्वर को बहुत से महान चिन्हों में देखा था। हम ये विश्वास करते हैं, क्या हम नहीं करते, आने वाले पुत्र से ठीक पहले। लेकिन इससे पहले कि पुत्र का प्रकटीकरण हो, वहाँ एक चिन्ह था जो उसे दिया गया था, क्योंकि पुत्र, सच्चा पुत्र अब्राहम के विश्वास के जरिए से परमेश्वर का पुत्र होना था। देखो जो यीशु था, हम अब्राहम के बीज हैं, मसीह में मरकर हम अब्राहम के बीज हैं। अब ध्यान दीजिए, ठीक इससे पहले ये बात जगह ले, उस पुत्र को आना था। अब यह एक जो रुक गया और अब्राहम से बातें की, उसकी पीठ तंबू की ओर थी और उसने कहा अब्राहम। अब इसके ठीक एक दिन पहले वो अब्राहम था। अब उसने कहा अब्राहम, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ना ही सारा, SARAH, राजकुमारी, तेरी पत्नी कहाँ है? सारा कहा, वो आपके पीछे तंबू में है। उसने कहा, मैं तुमसे भेंट करने जा रहा हूँ, देखो मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार जो मैंने तुमसे की है। दूसरे शब्दों में, जीवन के समय के अनुसार सारा फिर से अपने सामान्य स्त्री जीवन के समय में आने लगेगी। और सारा बूढ़ी हो गई थी, अब 100 वर्ष की हो चुकी थी, तंबू के भीतर अपने मन ही मन हंस पड़ी। देखो वो अपने आप में मुस्कुराई, कहा वो व्यक्ति कैसे सही हो सकता है? देखो मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, मेरा स्वामी अब्राहम भी बूढ़ा है, हमारा दाम्पत्य जीवन कई साल पहले ही समाप्त हो चुका है। कहा मैं भला कैसे अपने स्वामी के साथ फिर से सुख को पा सकती हूँ? वह बूढ़ा हो गया है और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दूध की नसें खत्म हो चुकी है, हर वह सूख गई है, हमारे पास भला फिर से कभी कैसे सुख हो सकता है? और उस व्यक्ति ने अपनी पीठ तंबू की ओर घुमाकर कहा, सारा यह कहते हुए क्यों हंसी? ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह क्या था? विचारों को परखना, एक भविष्यवाणी, देखा देखा, यही है जो उसने देखा। अब उसने कहा यह फिर से लौटेगा और मनुष्य का पुत्र जो कि वो था, वह ठीक वहाँ पर मनुष्य का पुत्र था, तो ठीक है, उसने उसे एलोहिम कहा, प्रभु परमेश्वर। एलोहिम कोई भी जानता है कि यह सही है, एलोहिम प्रभु परमेश्वर होता है। आदि में एलोहिम ने आकाश और धरती की रचना की, वो एक जो सर्व पर्याप्त है, मनुष्य का पुत्र देहधारी हुआ, वहाँ वह उस समय पर देहधारी होकर वहाँ खड़ा था, एक दैविक शरीर के समान वहाँ खड़ा हुआ था, विचारों को परख रहा था कि सारा उसके पीछे तंबू में क्या सोच रही थी। उसने प्रतिज्ञा की, देखो अब्राहम के शाही बीज के लिए भी उसी चीज को देखने की प्रतिज्ञा की गई है। लेकिन लूत पर ध्यान दें, उसके पास वहाँ पर भी एक दूत था, उनमें से दो दूत वहाँ नीचे गए, उनमें से एक नीचे चला गया और दूसरा एक उसके साथ वहाँ नीचे गया और उन्होंने प्रचार किया और लोगों को आने वाले क्रोध से भागने के लिए बताया। स्थिति के अनुसार जिस दिन यीशु ने यह प्रतिज्ञा की थी, उस दिन से लेकर अब तक संसार कभी भी ऐसी अवस्था में नहीं रहा। मैं किसी भी इतिहासकार से पूछना चाहता हूँ जो हो सकता है इस भवन में मौजूद हो, या यदि आप इस टेप पर भी इसे सुनते हैं और इसे किसी भी समय सुनते हैं, तो कृपया मुझे लिखें। मैंने अब लगभग 30 वर्षों से इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ, बाइबल के इतिहास का, और ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं रहा है जिसे मैंने कभी भी कलीसिया के पूरे इतिहास में नहीं देखा हो। 7 कलीसिया युगों में से होते हुए अब हम लौदिकिया में हैं और हम ये जानते हैं, कभी भी कोई संदेशवाहक नहीं हुआ है जो कभी भी संपूर्ण कलीसिया के पास गया हो जिसके नाम की समाप्ति HAM हम के साथ होती हो। अब तक कोई नहीं है, GRAHAM, बिली ग्राहम, वहाँ पर मूडीज, पिन्नी, सेंकी, नॉक्स, लूथर और इत्यादि रहे हैं, लेकिन कभी भी एक HAM हैम नहीं हुआ, राष्ट्रों का पिता। अब याद रखना, वो GRAHAM है, ग्राहम 6 अक्षर, लेकिन ABRAHAM अब्राहम 7 अक्षर है। ध्यान दें, वे वहाँ पर हैं, बिली ग्राहम संसार के उन सारे भागों में जा रहे हैं और सदोम से बाहर आने के लिए पुकार रहे हैं, बाहर आओ, आने वाले क्रोध से भागो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे मैं जानता हूँ उस कार्य क्षेत्र में जिसके पास परमेश्वर की पकड़ हो धर्मीकरण के वचन पर, जैसे बिली ग्राहम करते हैं, वह इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। वह कोई ऐसा धर्मज्ञानी नहीं है, मैं सोचता हूँ वो एक धर्मज्ञानी है, लेकिन वह कोई इतना जबरदस्त शिक्षक भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ होता है और वह व्यक्ति संडे स्कूल की शिक्षा की तरह बोलते हुए लोगों को पूरी तरह बांधे रखता है। वह परमेश्वर का इस घड़ी का सेवक है, किसके लिए? स्वाभाविक कलीसिया जो सदोम में है। लेकिन याद रखें, वहाँ एक आत्मिक कलीसिया थी जो उस सांप्रदायिक ढांचे का भाग नहीं थी, बाहर बुलाया हुआ झुंड, और उन्होंने एक संदेश को और एक संदेशवाहक को भी ग्रहण किया। और ये क्या था? उन विचारों को परखना जो हृदय में थे। परमेश्वर हमेशा अपने वचन को साबित करता है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस निर्णायक क्षण में जहां निर्णय अवश्य ही लिए जाने चाहिए, समय बीत रहा है, हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु कौन सी घड़ी में आ सकता है, और जैसा कि हम इन भविष्यवाणियों को देखते हैं जो उसके द्वारा की गई हैं, युगों युगों से आपके भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कुछ कहा गया था वह अब प्रकट किया जा रहा है। हे परमेश्वर, मैं इसके लिए आपका कितना धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक कि हष्टपुष्ट शरीर वाला मनुष्य, धर्म ज्ञान में निपुण मनुष्य, जो संसार की धूर्तता और अविश्वासियों के विरुद्ध खड़ा हो सकता है और इन मंचों पर और संदेह की छाया से परे वहाँ निडर होकर और साहस से खड़ा हो सकता है, जानते हुए कि वे कहाँ खड़े हैं और पवित्र शास्त्र के द्वारा उस वचन को सत्य साबित करता है। और फिर हम जो आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, इन अन्य बातों पर विश्वास करते हुए जिनकी भविष्यवाणी की गई है कि वे जो बातें जगह लेगी, कि खड़े होकर यह देखने का आनंद लें कि आप ठीक हमारे बीच में चल रहे हैं और वही कार्य को कर रहे हैं जो आपने कहा था कि ऐसा घटित होगा। अपने वचन को सही साबित करते हुए अनंत परमेश्वर, आपके बीमार बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता कि हमें और कितना समय काम करना है, सांझ का सूर्य डूब रहा है, लेकिन आपने भविष्यवक्ता से प्रतिज्ञा की है सांझ के समय उजाला होगा, और हम देखते हैं कि वही सूर्य पूर्व में उगता है, वही सूर्य है जो पश्चिम में अस्त होता है। रोजाना के जीवन ने सूर्य के साथ यात्रा की है और अब हम पश्चिमी तट पर हैं और सुसमाचार ने रोजाना के जीवन के साथ यात्रा की है। अब पिता, हम जानते हैं कि यह सुसमाचार का अंत है, समय का अंत है, युग का अंत है, वह अनंतता में लुप्त होती जा रही है, लेकिन आपने प्रतिज्ञा की है कि पुत्र सामने आएगा, मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, अंत के दिनों में ये बात जगह लेगी। सांझ का उजियाला आ गया है पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यद्यपि यह बहुत विनम्र तरीके से होता है, फिर भी आप इसे बहुत बार इतने साधारणता से करते हैं कि यह बड़े बड़े तथा कथित तेज दिमाग वालों के सिर के ऊपर से चला जाता है और इसे ऐसे बालकों पर प्रकट करते हैं जो सीखना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप इसे आज रात ऐसा करेंगे कि यहां पर आपके बेचारे बीमार बच्चे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखें और उनमें से हर एक जन चंगा हो जाए और कल यहां से नए मजबूत शरीर के साथ बाहर निकलें और फिर से स्वस्थ हो जाएं। प्रभु इसे प्रदान करें जिससे कि वे संदेश को एक से दूसरे तक ले जा सकें, जब तक कि अंतिम एक बाड़े में नहीं आ जाता और तब दरवाजे बंद हो जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, हमारी सहायता करें। आज रात मैं आपसे मांगता हूं इन सब के सामने, क्या आप बस एक बार और इसे करेंगे पिता? मेरे लिए यह ऐसा दिखाई दिया, उस रात लोगों ने इस पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ इसे आज रात को फिर से होने दीजिए प्रभु, क्योंकि मैंने बोलने के लिए अपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि हमें इसे करने के लिए और कितना समय लगेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, क्या आप मेरी सुनेंगे और इन धर्मी पुरुषों और महिलाओं की प्रार्थना सुने जो आज रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आपकी आत्मा से भरे हुए हैं, वे विश्वासी हैं प्रभु, आप बस उनके मध्य में काम कर सकते हैं। और हम, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कहे गए वचन की पुष्टि करेंगे, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। यीशु, इसे फिर से होने देना ताकि यह साबित हो कि आप कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। मैं इसे परमेश्वर की महिमा के लिए मांगता हूँ उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब बस कुछ क्षण के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोगों के पास प्रार्थना कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने हाथों को उठाएं। आप में से हर एक जन जिसके पास प्रार्थना कार्ड है, तो ये आमतौर पर मुझे लगता है बस लगभग ये सब कुछ खत्म हो गया है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ कितने लोगों के पास प्रार्थना कार्ड नहीं है और इस समय आप बीमार हैं। क्या आप अपने हाथों को उठाकर और कहेंगे, मेरे पास प्रार्थना कार्ड नहीं है और इस समय मैं बीमार हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ। मैं आपसे कुछ क्षण के लिए आदरपूर्ण होने के लिए कहना चाहता हूँ। अब मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, मेरी हमेशा ही यही परेशानी रही है, मैं बहुत देर तक बात करता हूँ, लेकिन आपके आने से पहले मैं आशा करता हूँ और भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर यह साबित करेगा और जो मैंने कहा है वो सत्य है, और बस उसे देखने दो। अब वहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो बीमार हैं, जो जानता है कि मैं आपके बारे में एक भी बात नहीं जानता, अपने हाथ ऊपर उठाएं, बस इसकी ओर देखें तो ठीक है। अब मैं आप बिना प्रार्थना कार्ड वाले लोगों को चाहता हूँ, प्रार्थना कार्ड वालों को ऊपर बुलाया जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें। बाइबल ने कहा कि यीशु मसीह कल, आज और जुगाने युग एक सा है। वो कहता है वो एक महायाजक है जो वहाँ बैठा हुआ हमारे अंगीकार करने पर बिचवाई के काम को कर रहा है। हमें पहले इसे अंगीकार करना होगा इससे पहले कि वो एक महायाजक हो सके, क्योंकि वह केवल हमारे अंगीकार करने के लिए बिचवाई के काम को करता है। क्या यह सही है सेवक भाइयों? देखो, वह केवल हमारे अंगीकार करने पर बिचवाई के काम को करता है। हम जो अंगीकार करते हैं कि वो वही है, उसने हमारे लिए जो किया है। ऐसा नहीं कि वो जो करेगा इसे वह पहले ही कर चुका है। हमें यह अंगीकार करना होगा कि उसने यह कर दिया है। उसे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अब स्वर्गीय पिता जानता है और आपकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं ओहियो से अपने एक अच्छे मित्र को पहचान रहा हूँ। वो और उसकी पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं। ये श्रीमान डोच और उनकी पत्नी हैं, और मैं विश्वास करता हूँ उनके पास दूसरे या तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं यह फिर से वो आदरणीय श्रीमान ब्लेयर हैं, जिन्हें मैंने पिछली रात को देखा था। यह श्रोतागण के ऊपर अंधेरा है मेरे लिए। यहाँ इन रोशनियों की वजह से मेरे लिए एक प्रकार से धुंधला दिख रहा है और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें और आप अपने हृदय में उस चीज को रखें जिसकी आपको आवश्यकता है, और आप हमारे महायाजक से मांगें जिससे हमारी दुर्बलताओं की भावना से छुआ जा सकता है। अब मैं आपको नहीं जानता हूँ और शायद आप बस मुझे पूरी तरह से छू सकते हैं। ये अपने भाई को छूने जैसा होगा, आपका पति, आपका पार्षद, किसी को भी छुए इससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसे छूते हैं और यदि हम सच में उसकी आत्मा की पंक्ति में हैं या अनुरूप हैं, तब वो आपके विश्वास का उपयोग कर सकता है कि उसे छुएं और मेरे दान को वापस बोलने के लिए उपयोग कर सकता है। देखिए, मैं भी ठीक इसकी तरह बिल्कुल मूक या गूंगा होता, जैसे कि यहाँ पर ये चीज है, बिना किसी आवाज के इसमें से होकर बोलना है, वहाँ पर होना है। यह एक मूक चीज है जब तक इसमें से होकर बोलने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। और वैसे ही कोई भी व्यक्ति जब इन चीजों की बात आती है वो मूक होता है जब तक कि परमेश्वर उसके जरिए से नहीं बोलता है। अब आप प्रार्थना करें और देखें कि जो बातें मैंने कही हैं क्या वे सत्य हैं। परमेश्वर ऐसा होने में सहायता करे। मैं यह नहीं कहता कि वो ऐसा करेगा, मैं आशा करता हूँ कि वो करेगा। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि वो करेगा। उसने मुझे अभी तक कभी भी निराश नहीं किया है। इतने वर्षों में सारे संसार भर में सभी प्रकार के राष्ट्रों और लाखों लोगों के साथ उसने मुझे अब तक कभी भी विफल नहीं किया है, और मैं निश्चित हूँ, बस उतना ही निश्चित हूँ जितना मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वह अब मुझे विफल नहीं करेगा। मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि आप आदर रखें और कुछ क्षणों के लिए बैठे ही रहें। हम अभी मुख्य सभा को समाप्त करने जा रहे हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे बस कुछ ही क्षण में। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप विश्वासी लोगों से कि यदि आप मेरी ओर ना देखें केवल विश्वास करें, कहें मैं विश्वास करता हूँ कि उस व्यक्ति ने जो कहा ये वचन है। मुझे नहीं पता कि हम उतने अंतिम समय में पहुँच गए हैं जितना वो कहता है, लेकिन यदि ऐसा है तो यह अवश्य होगा। यदि उसके वचन परमेश्वर के वचन हैं, तो उसके अपने शब्द असफल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन नहीं होंगे। परमेश्वर अपने वचन का समर्थन करने के लिए बाध्य है। वो इसे साबित करेगा, वो इसे साबित करेगा। वह जो मुझ पर विश्वास करता है उसने साबित किया कि यह अंतिम दिन है, उसने साबित किया कि क्या होगा, उसने साबित कर दिया कि ये होना ही था। और याद रखें, अब्राहम और उसके झुंड को परमेश्वर से कभी भी एक और चिन्ह नहीं मिला जब तक कि प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र नहीं आ गया। कितने लोग जानते हैं कि ये सच है, वो विचारों को परखने का चिन्ह और अब्राहम का शाही वंश। मुझे आपसे सुनने दो, मैं आपको बता दूं, यहोवा यो कहता है, आप अपने अंतिम चिन्ह को प्राप्त कर रहे हैं। यह वचन और परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार है जो मेरे हृदय में है, जो बोलता है कि यह सत्य है, और मैं भरोसा करता हूँ कि आप इसका सत्य होने का विश्वास करेंगे। अब आप विश्वास करें, सभी जन बस विश्वास करें, कहें प्रभु यीशु मुझे आपको छूने दो, मेरे हृदय में एक आवश्यकता है, और मैं जानता हूँ कि भाई ब्रैनम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं यहाँ तक उस मनुष्य को जानता भी नहीं, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं, और यदि उसने मुझे सत्य बताया है तो ये घटित होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, अब यहाँ वहाँ न जाएं, बस थोड़ी देर के लिए। वास्तव में देखिए, आप आत्मा हैं और मैं यहाँ हर एक आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ताकि उसका वचन पूरा हो सके। अब केवल आदरपूर्ण बने रहें, प्रार्थना करें, उसकी ओर देखें, कहें प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे अविश्वास का उपाय करें। आइए हम आरंभ करें। मुझे यहाँ भवन के किसी एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि देखो आप में से बहुत से लोग हैं और आप में से हर एक आत्मा है। मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कहते हैं मेरे बारे में क्या है, मैं आपको नहीं बता सकता। ये सर्वोच्च अधिकार है, परमेश्वर के सभी कार्य सर्वोच्च अधिकार हैं। आज रात इस मंच पर से होते हुए बहुत से लोग चंगे होंगे, हो सकता है बहुत से लोग ना हों। यह सब परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार में है। उसे कौन बता सकता है कि उसे क्या करना है? कोई नहीं। वह खुद की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, खुद की योजना के अनुसार। लेकिन आप बस विश्वास करें, नम्र बने, घबराएं नहीं, बस परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें और कहें, प्रभु परमेश्वर, मैं इसका विश्वास करता हूँ। देखा, मुझे आपके वस्त्र को छूने दो, मुझे ऐसी और ऐसी बात की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि भाई मुझे नहीं जानता या मेरी आवश्यकता को नहीं जानता, लेकिन उसने हमें इन कामों के बारे में बताया जो आपने किए थे और कहा कि आप आज यहाँ एक से हैं। यह आप भाई लोगों को यहाँ मंच पर बाहर नहीं करता है, आप में से किसी को भी। मेरे भाइयों, मैं अब आपसे पूछता हूँ, मसीह के सुसमाचार के सहकर्मी के रूप में मैं आपसे उतनी ही ईमानदारी से बोल रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ, जैसे एक मरता हुआ मनुष्य आपसे बात कर रहा है जो इस संसार को छोड़ने वाला है। हमें छोड़कर जाना होगा और मुझे न्याय के दिन अपनी कही गई बातों का हिसाब देना है। मैं इसके प्रति सचेत हूँ, बहुत ही सचेत हूँ, और मैं आपकी सराहना करता हूँ। आप जो हैं या मेरे साथ खड़े हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मांग रहा हूँ। यहाँ कितने लोगों ने कभी चित्र में उस प्रकाश को देखा है? आपने इसकी तस्वीर देखी है? यह ठीक वहाँ पर टंगी है, क्या आप इसे नहीं देख सकते? यह उस महिला के ऊपर है जो वहाँ अपने रुमाल के साथ बैठी है। वह अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रही है। यह सही बात है महिला, वह प्रियजन। क्या आप मुझे उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करती हैं? या मुझे क्षमा करें, उसका दास होने का? आप ये विश्वास करते हैं तो ठीक है। अब यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर सकता है कि क्या गलत है, क्यों, क्या आप इसे परमेश्वर की ओर से स्वीकार करेंगे जैसे स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ? अब आप जानती हैं कि आप मुझसे 20 या 30 फीट की दूरी पर हैं या उससे अधिक। आपने मुझे कभी भी छुआ नहीं है, लेकिन आपने कुछ तो छुआ है। आप जानती हैं कि आप किसी चीज के संपर्क में हैं, किसी के साथ। यह क्या है? यह एक महिला के लिए है जो कि आपकी बेटी है। यह सही है? क्या आप विश्वास करती हैं कि वह चंगी हो जाएगी? वो नशे की आदी है। यह बिल्कुल सही बात है। मैं उसे नशे में तैरते हुए देखता हूँ, समझे? अब जो रुमाल आपके हाथ में है, आप उसके ऊपर रखें और संदेह न करें। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। क्या आप मेरे साथ इसका विश्वास करेंगी? आमीन। अब मैं उस स्त्री को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर से जानता है। क्या अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? वो व्यक्ति वहाँ पर धारीदार कमीज पहने बैठा हुआ है, हर्निया से पीड़ित, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपको ठीक कर देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इसे करेगा? मैंने अपने जीवन में उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा है। आपके पास प्रार्थना कार्ड है श्रीमान? आपके पास नहीं है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं, यहाँ एक स्त्री बैठी है जो ठीक यहाँ बैठी हुई इस स्त्री के ऊपर से देखने की कोशिश कर रही है। वह मेरे लिए अजनबी है, लेकिन वो सचमुच घबराई हुई है। मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है और वो ठीक अभी ये अनुभव कर रही है कि वह किसी चीज के संपर्क में है। आप किसी कारण से वहाँ प्रार्थना कर रही हैं। आपका कारण यह है कि आप आज रात से ज्यादा नहीं रुक सकती हैं। आपको सभा छोड़कर जाना ही है। आप कल अपने घर जाने की योजना बना रही हैं। आप यहाँ से नहीं हैं, या न ही आप कैलिफोर्निया से हैं। आप यहाँ से पूर्व की ओर जा रही हैं। आप हवाई जहाज से जा रही हैं। आप हवाई जहाज से जाने की योजना बना रही हैं। आप ओक्लाहोमा से हैं। जी हाँ, यह सही है। आप भी मरने की स्थिति में हैं। आप यहाँ प्रार्थना करवाने आई हैं। आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है, लेकिन आपने विश्वास किया है कि यदि आप केवल यहाँ तक आ सकें, तो आप चंगी हो जाएंगी। यह सही है। आपकी स्थिति कैंसर की है। कैंसर हड्डी में है। क्या आप विश्वास करती हैं कि अब आप चंगी होने जा रही हैं? आप विश्वास करती हैं कि आप उसके संपर्क में हैं मेरी बहन? शायद परमेश्वर मुझे बताए कि आप कौन हैं, तो क्या इससे आपको मदद मिलेगी? यदि ऐसा है तो अपने हाथ को ऊपर उठाएं। यदि आप यह विश्वास करती हैं कि परमेश्वर इससे आपकी मदद करेगा, तो ठीक है श्रीमती स्टील, आप ओक्लाहोमा वापस जा सकती हैं।
I don't know the lady. I have never seen her.
मैं उस स्त्री को नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा।
Here's a lady sitting right back here behind her. She
यहाँ एक स्त्री ठीक उसके पीछे बैठी हुई है, वह उभरी हुई नसों से पीड़ित है।
And she's also got a son that's an alcoholic.
और उसका एक बेटा भी है जो शराब पीता है, और वह उसके लिए प्रार्थना कर रही है। यदि वह विश्वास करे तो वह चंगी हो सकती है। श्रीमती मेसन, क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी और विश्वास करेंगी कि यीशु मसीह आपको चंगाई प्रदान करेगा? क्या आप करती हैं? तो ठीक है, तो फिर अपना हाथ वहाँ आपके बगल में बैठी हुई उस स्त्री पर रखें। वह अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है जो बचाया नहीं गया है। परमेश्वर चंगाई को प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे इस आशीष को प्रदान करें। प्रभु, उस स्त्री को उसके हृदय की इच्छा को दीजिए। उसका विश्वास आपके इतने नजदीक है, इसने आपको छुआ है, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप यीशु के नाम में सहायता करेंगे। आमीन। अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि आपने इसे ग्रहण किया है। क्या आप ऐसा करेंगी? तो ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आपको विश्वास है कि आपका पति बच जाएगा? महिला, क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? अपना हाथ उठाएं कि आप विश्वास करती हैं। वहाँ ऐसा दिखाई देता है मेरे सामने एक स्त्री जिसका वजन अधिक है, वो वहाँ पर बैठी हुई है। आप मुझे परमेश्वर का सेवक होने का विश्वास करती हैं? आप मुझे परमेश्वर का सेवक होने का विश्वास करती हैं? आप करती हैं? तो ठीक है, मैं आपको नहीं जानता। आपकी जो परेशानी है ये ग्रंथियों की है, आपका वजन ज्यादा है। आप एक डॉक्टर के पास गई होंगी, उसने कहा कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो एक धरती पर का डॉक्टर है। देखा आपका, आपको बस बहुत ही दुख हुआ था। आपने अपने पति को खो दिया है। आप यहाँ से नहीं हैं, आप असल में अरकनसास से हैं। आप काम को भी ढूंढ रही हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है। आपको कुछ तो ऐसा डर था कि आपको बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन आपके विश्वास ने आप परमेश्वर को छू लिया है। मेरी बहन, आप जाएं, विश्वास करें, परमेश्वर आपको नौकरी प्रदान करें, आपको आपके हृदय की इच्छा को प्रदान करे। परमेश्वर अपने वचन को सत्य साबित करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि ऐसा ही है? अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फिर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप वही परमेश्वर हैं जिसने साबित किया है। जब आपने कहा था लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है, तब आपको इसे साबित करना था। अब आपने प्रतिज्ञा की है कि अंत समय के आने से ठीक पहले कि वो मनुष्य का पुत्र खुद को उसी प्रकार से प्रकट करेगा जैसे उसने सदोम में किया था। प्रभु, आपने इसकी प्रतिज्ञा की है। अब आप पवित्र आत्मा के रूप में धरती पर आए हैं और आज रात हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करने वाले लोग हैं और इसे साबित किया है। आपने अपने वचन को साबित किया है जैसे आपने उस दिन किया था। प्रभु, हमें और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे बीच में हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, और हम यह अनुभव करते हैं कि वचनों के अनुसार यह आपके आगमन से ठीक पहले का अंतिम चिन्ह है, और सारी प्रतिछाया और नमूने कभी भी विफल नहीं होते हैं, उन्हें वास्तविक में होना है। सो हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे कि आपके बच्चे अब प्रार्थना के लिए आते हैं कि हर एक जन चंगा हो जाए, होने पाए इस चंगाई सभा के अंत में वहाँ हमारे बीच कोई भी बीमार व्यक्ति ना बचे। हे प्रिय परमेश्वर, क्या आप अपने लोगों पर अभिषेक को ठीक अभी इतना कृपा पूर्वक होने देंगे कि उनमें से हर एक जन चंगा हो जाए? और यदि यहाँ कोई है जो अब तक आपकी संतान नहीं है, और इन बातों के आधार पर कि उन्होंने वचन को सुना है और काम को पूरा होते हुए देखा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही अक्षर दर अक्षर साबित हुआ है, और आप कौन हैं और आप क्या हैं कि आप यहाँ पर हैं? और प्रभु, क्या आप एक झूठ को आशीष देंगे? क्यों, बिल्कुल भी नहीं प्रभु, लेकिन आपने अपने वचन को आशीषित करने की प्रतिज्ञा की है, और यह व्यर्थ नहीं लौटेगा, यह उस कार्य को पूरा करेगा जिस उद्देश्य के लिए इसे भेजा गया है, और अब आपने आज रात हमारे सामने बिना किसी संदेह के इसे कर दिया है, और हमारे झुके हुए सिरों के साथ। क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी विश्वास नहीं किया, जो बस अपने हाथ को ऊपर उठाना चाहेगा, अपने सिर को झुकाकर बस अपने हाथ को ऊपर उठाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और कहें, अब मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ और मैं ठीक अभी यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है जिसने अभी तक मसीह को स्वीकार नहीं किया है, और क्या इस समय पर इसे करना चाहेगा? मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपनी पसंद की कलीसिया में जाएं, लेकिन मैं आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं, जबकि आप शायद कभी भी उसके इतने नजदीक नहीं रहेंगे जब तक आप उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख लेते हैं जब वह स्वर्ग से अपनी प्रगट देह में आता है। यदि आपने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है तो क्या आप उसे अभी स्वीकार करेंगे? यह देखते हुए बिना आधार के यहाँ कोई भी खड़ा हुआ नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी समझदार विवेकशील लोग हैं और इस बात को जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप वहाँ इसके नीचे बैठे हैं तो आपको याद होगा, यदि तुम मनुष्य के सामने मुझसे लज्जित होंगे तो मैं अपने पिता के सामने तुमसे लज्जित होऊंगा। वहाँ कोई तो खड़ा था, हो सकता है हाँ श्रोतागण में पीछे की ओर। प्रिय परमेश्वर, वे लोग जो खड़े हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हो सकता है वे आपको स्वीकार करना चाहते हैं। प्रभु, उन्हें एहसास हो गया है कि ऐसा अब तक नहीं किया गया है, और अब आप इसकी पुष्टि करें और साबित करें कि ऐसा ही है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो उनके हृदय में हैं, जो इस समय पर असाधारण रूप से बड़े हैं। हम कैसे जानेंगे कि यह अंतिम व्यक्ति कौन है जो अंदर आएगा? यह हो सकता है लॉस एंजलिस के लिए अंत हो, यह हो सकता है अंतिम प्राण हो जो राज्य के अंदर जन्म लेगा। हम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा, और जब ऐसा होता है तो द्वार बंद हो जाएगा, देह पूरी हो जाएगी। यह एक विचित्र देह या एक विचित्र दुल्हन नहीं होगी। इसके ऐसे बहुत से सदस्य होंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में संसार की बुनियाद डालने से पहले लिखे गए थे, जिसे यीशु लेने को आया, आदम की तरह अपनी पत्नी को बचाने के लिए सीधा बाहर चला गया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि अब आप उन्हें अपने राज्य में ग्रहण करेंगे, वे आपके हाथों में हैं, उनके साथ व्यवहार करें। प्रभु, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे जो खड़े हुए हैं। मैं नहीं जानता था कि आप में से कुछ लोग खड़े हैं, कुछ पीछे की ओर खड़े थे, कुछ ऊपर बालकनी में। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक काम करें, कृपया मुझे समझें, यहाँ किसी सेवक से मिले और कलीसिया समाप्त होने के बाद उनसे इस बारे में बात करें। क्या आप ऐसा करेंगे? इस बात से चूकना मत, यदि आपने कभी भी मसीही बपतिस्मा में बपतिस्मा नहीं लिया है, इसके बाद इसे करें और फिर अपने हाथों को ऊपर उठाए रखें जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पा लेते। अब और यहाँ बहुत से लोगों के पास प्रार्थना कार्ड हैं, हम उन्हें कहेंगे कि वे खड़े हो जाएं और यहाँ पर आ जाएं, और मैं सोचता हूँ कि वहाँ से होकर जाएं या मुझे वहाँ आना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरफ से यहाँ पर, इस तरफ से होकर बाहर आ सकते हैं, वहाँ इस तरफ से, वे लोग जिनके पास प्रार्थना कार्ड हैं। और अब यदि आप में से किसी को जाना ही है तो यह मुझसे देर हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं कल रात थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, पर दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 10:10 हो गए हैं। आज रात आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप रुककर और प्रार्थना पंक्ति देखना चाहते हैं तो आपका हमेशा ही स्वागत है, लेकिन अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, और मैं और यदि आप रुकना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको रोकना नहीं चाहूँगा। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। होने पाए परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे और आपको आशीष मिले, और सारी रात भर आपके शरीर को विश्राम दे और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे कि आप कल रात को फिर से वापस आ सकें। अब परमेश्वर आपके साथ हो, और जिनके पास प्रार्थना कार्ड है वे अब प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं, जैसा कि हम हर जगह के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप जान लें, अब आप जो प्रार्थना कार्ड के साथ खड़े हुए हैं, क्या आपके जीवन में कोई संदेह है? क्या कोई संदेह है? मुझे क्षमा करें, आपके जीवन में कोई पाप है जिसे आपने स्वीकार नहीं किया है? यदि ऐसा है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, अपने हृदय में बिना स्वीकार किए पाप के साथ प्रार्थना पंक्ति में ना आए, क्योंकि आपको अवश्य ही यह बच्चों की रोटी है देखो। और यदि आप एक मसीही नहीं हैं, तो अपने जीवन को मसीह को समर्पित करें, उसके बाद प्रार्थना पंक्ति में आएं। यह विश्वासी लोगों के लिए है, क्या आप इसे करेंगे? पहले उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और उसके बाद प्रार्थना करवाने के लिए मंच पर आ जाएं। अब मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, ना ही उन्हें ऐसे वहां से होकर गुजरना है जैसे किसी प्रकार का एक नित्य नियम हो। हम अब एक कलीसिया में हैं। मैं सोचता हूँ बेन वॉट ने हमें एक विचार दिया है कि हम यहाँ रुककर और प्रार्थना कर सकते हैं। हम जब तक चाहें तब तक रुक सकते हैं। और मैं बहन वॉट और यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, हमें ऐसा करने दिया। परमेश्वर बहन को आशीष दे। उसका साहसी पति इस मंच पर खड़ा होता था। उसने बीमारों के लिए प्रार्थना की उसकी मृत्यु तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्रूस का एक सच्चा योद्धा। और अब मैं उसी चीज को करते रहने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लोगों को आशीष देता रहूँ। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक जन यहाँ से होते हुए आगे बढ़े। आपको कुछ भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है जो आप चाहते हैं। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके साथ क्या समस्या है। बस आए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और विश्वास करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए भेजा है? अपना हाथ ऊपर उठाएं। याद है प्रभु के दूत ने क्या कहा था? यदि तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए लगाते हो तो प्रार्थना करते समय सच्चे बने रहना। तुम्हारी प्रार्थना के सामने कुछ भी टिक नहीं सकेगा। और आप जानते हैं कि ये सच है। यह बार बार और बार बार साबित हुआ है। अब मैं पूछने जा रहा हूँ कि हमारी बहन रोज यदि वो चाहे तो इस गीत को बजाएं कि केवल विश्वास करो, या वो महान चिकित्सक अब निकट है, या कुछ तो और। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक जन अब मेरे साथ संगति में हो। क्या आप भी करेंगे? आप लोग जो प्रार्थना पंक्ति में नहीं हैं, क्या आप इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? तो ठीक है, उनसे प्रतिज्ञा करें कि अपना हाथ ऊपर उठाते हुए मैं प्रार्थना करूंगा। देखो हम सब प्रार्थना करेंगे, तो ठीक है। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप, यदि आपको छोड़कर जाना है तो अब बहुत ही शांति से जाएं, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो उन्हें परेशानी ना हो। क्या आप विश्वास करती हैं कि यह अब खत्म हो जाएगा बहन? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथ बहन पर रखता हूँ, उसके शरीर के कष्ट को चुनौती देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में होने पाए ये उसे छोड़ दे, आमीन। आपको आशीष मिले बहन। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आपके सारे पापों को स्वीकार करती हैं? आप जहाँ तक आपको पता है आप अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में अपनी बहन पर अपने हाथों को रखता हूँ और यीशु के नाम में मांगता हूँ कि उसके शरीर की पीड़ा चली जाएगी, आमीन। सारे पापों को स्वीकार कर लिया गया है और आप अपनी चंगाई के लिए तैयार हैं। भाई, आप विश्वास करते हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथ अपने भाई पर रखता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सारे पापों को स्वीकार किया है? नहीं, आप सुन नहीं सकती। क्या आप विश्वास करती हैं कि आप सुनेंगी? आप विश्वास करती हैं। यह महिला अब बहरी है। हम अब प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे और उसका बहरापन दूर करेंगे। वह एक बंद दुनिया में बैठी हुई है जहाँ वह सुन नहीं सकती। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे यीशु के नाम में से होते हुए चंगाई को प्रदान करेंगे। मैं लोगों से एक मिनट के लिए अपने सिर को झुकाने के लिए कहना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। अब कृपया यीशु मसीह के नाम में कोई भी अपना सिर या आंखें ऊपर न उठाए। अब आपको ऐसा नहीं करना है जब तक मैं आपको न कहूँ। क्या अब आप मुझे सुन सकती हैं? मुझे सुना? सुन सकती हैं? वह अब सुन सकती हैं। देखा, वो आवाज सुनी। अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें कि आप करेंगी, और आप विश्वास करें और परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा कर देगा। उसने कहा, मैंने बस प्रार्थना की और अपने हाथों को उसके कानों पर रखा और उसने कहा कि वह कुछ तो सुन सकती है। तो ठीक है, बस आगे बढ़ते रहें यह विश्वास करते हुए कि आप ठीक से सुनने जा रही हैं और आप सुनेंगी। क्या आपने सभी पाप स्वीकार किए हैं बहन? क्या आप अपनी चंगाई के लिए तैयार हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथों को अपनी बहन पर रखता हूँ, यह जानते हुए कि हम में कोई अच्छी बात नहीं है अपने आप में, लेकिन हम जानते हैं कि हम मसीही हैं जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं, और हम अपनी बहन पर हाथ रखते हैं और यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं, आमीन। अब आप विश्वास करती हैं कि आप चंगी होने जा रही हैं? तो ठीक है, अब आप चंगी हो गई हैं। इसे करने का यही तरीका है। ये सही है, सही है। आपने सारे पापों को स्वीकार किया है और आप अपनी चंगाई के लिए तैयार हैं। आप विश्वास करती हैं हाथ रखने के द्वारा कि परमेश्वर, जो लोगों के हृदय को जानता है, आपको चंगा करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे, जैसा कि हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि आप उसे चंगा कर देंगे, आमीन। आप कैसी हैं? निश्चय ही आप जानती हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके साथ क्या समस्या है, लेकिन मैं बस इसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जानती हैं यह बस आगे चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। लेकिन यदि आप, क्या आपने सभी पापों को स्वीकार किया है और आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? क्या आप विश्वास करती हैं कि गठिया मैंने इसे कह दिया है? प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसकी मदद करेंगे और उसे चंगा करेंगे, इसे प्रदान करें यीशु के नाम में। आप अपंग नहीं होंगी, जाएं, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? सभी पाप स्वीकार किए हैं और आप अपनी चंगाई के लिए तैयार हैं? आप विश्वास करती हैं कि आपकी पीठ ठीक हो जाएगी? प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। होने पाए ये ऐसा ही हो, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, जाएं अब विश्वास करते हुए। क्या आपने सभी पापों को स्वीकार किया है बहन? आप अपनी चंगाई के लिए तैयार हैं? प्रिय परमेश्वर, वो कहती है उसने पापों को स्वीकार किया है, मैं अपने हाथों को इस महिला पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसकी चंगाई के लिए मांगता हूँ, आमीन। क्या सभी पाप को स्वीकार किया है? आप अवश्य ही सही कह रही होंगी, आप बहुत बीमार हैं, आप ये जानती हैं। आप जानती हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके साथ क्या गलत है, और क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपके हृदय को चंगा करेगा और आपको पूरी तरह से ठीक करेगा? प्रिय परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करेंगे और उसे स्वस्थ करेंगे। पिता, यीशु के नाम में, होने पाए या उसे छोड़ दे, आमीन। परमेश्वर अब आपको आशीष दे, संदेह ना करें, जाएं विश्वास करते हुए। सारे पापों को स्वीकार किया है, आप चंगाई के लिए तैयार हैं? प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं अपने हाथों को अपनी बहन पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो चंगी हो जाए, आमीन। संदेह ना करें, जाएं विश्वास करते हुए। सभी पापों को स्वीकार किया है, क्या आप चंगाई के लिए तैयार हैं? प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे भाई को चंगा करेंगे, उसे स्वस्थ करें, इसे प्रदान करें। पिता, मैं इस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह के नाम में उस पर अपने हाथों को रखता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। क्या अब आप विश्वास कर रही हैं बहन? सारे पाप को स्वीकार किया है और आप चंगाई के लिए तैयार हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को बहन पर रखता हूँ, होने पाए वो आपकी महिमा के लिए चंगी हो जाए, आमीन। अब बस इस तरह से बहुत सी बार बस एक स्पर्श, जैसा कि यीशु ने कहा, ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखें, मैंने सभाओं में यह ध्यान दिया है कि इसका प्रभाव लगभग 50% अधिक होता है, वजह इसके कि लोगों को पंक्ति में बुलाकर उनके बारे में विचारों को परखा जाए, क्योंकि उस तरह से आप केवल कुछ ही लोगों को ले पाते हैं और इस तरह से कई और लोग भी चंगाई को पाते हैं। क्या आपने अपने सभी अविश्वास के पापों को और हर एक चीज को स्वीकार किया है? अब आप विश्वास करती हैं कि आप चंगी होने जा रही हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करेंगे। जब मैं उसके हाथों को पकड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, क्या आप अब विश्वास करती हैं? सभी पाप स्वीकार कर लिए हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथों को हमारी बहन पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसकी चंगाई के लिए, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। ऐसा लगता है एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन यह परमेश्वर है जिसने इसकी प्रतिज्ञा की है, पापों को स्वीकार किया है। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी इस बहन को चंगा करेंगे, जैसा कि मैं यीशु मसीह के नाम में उस पर हाथों को रखता हूँ, होने पाए वो जाए और चंगी हो जाए, आमीन। पापों को स्वीकार किया है। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करें, जैसा कि उस पर हाथों को रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब जैसा आप यंत्रिकी के साथ आते हैं, होने पाए यह गतिकी पर प्रभाव डाले तो यह काम करने लगेगा। पापों को स्वीकार किया है, आप तैयार हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे चंगा करें और उसे स्वस्थ करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, सभी पापों को स्वीकार किया है। प्रिय परमेश्वर, जब यह महिला मेरी आंखों की ओर देखती है, मैं यह विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे यीशु के नाम में चंगा करेंगे। आप अभी उसे लेकर आ रही हैं? क्या आप ला रही हैं बहन? आप उसे अभी ला रही हैं? तो ठीक है बहन, आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, आप हमेशा ही अंधे और जरूरतमंदों के लिए दयालु रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया है कि आपने आज रात क्या किया है, इसलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु, यह महान अंतिम चिन्ह अब हमारे बीच कार्य कर रहा है। मैं इस अंधी महिला की आंखों की रोशनी के लिए मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमें रिपोर्ट दें, इसकी रिपोर्ट दें। ओ हाँ, आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं अपने हाथों को हमारी बहन पर रखता हूँ और मांगता हूँ कि आप उसे यीशु मसीह के नाम में चंगा करें, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, हम सुनेंगे कि आपकी स्थिति कैसी है। क्या आप विश्वास करती हैं बहन? हे प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं हमारी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, भरोसा करते हुए कि अब आप उसे चंगा करेंगे। मैं अपने हाथों को उस पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब विश्वास करें, यह सही है, बस विश्वास करते हुए जाएं। क्या आप विश्वास करते हैं भाई? क्या सभी पापों को स्वीकार किया है? प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे भाई को ठीक करेंगे और उसे यीशु मसीह के नाम में चंगा करेंगे, आमीन। आप विश्वास करती हैं बहन? हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में नम्रता से इस समय की मधुरता और विनम्रता में होने पाए पवित्र आत्मा इस महिला को चंगा करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके बेटे को आपके पास भेजे बहन। प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रिय पिता, मैं हमारी बहन के लिए यहाँ प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा की मधुरता में होने पाए, वह अभी आ जाए और हमारी बहन को चंगा करे, यीशु के नाम में, आमीन। आपको आशीष दे बहन। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि वो यहाँ खड़ा हुआ है, और मैं उस पर हाथों को रखता हूँ और उसकी चंगाई के लिए मांगता हूँ यीशु के नाम में। आपको आशीष दे मेरे भाई। तो ठीक है छोटा लड़का। प्रिय परमेश्वर, उस छोटे बच्चे पर हाथ रखते हुए मैं उसे यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ उसकी चंगाई के लिए। अब आप विश्वास करती हैं बहन? क्या आप भी प्रार्थना करवाना चाहती हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं उस पर हाथों को रखता हूँ, अब ये आपका आदेश है, यही है जो आपने कहा है। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। आपने ये कहा प्रभु, आमीन। अब उसने ये कहा, क्या उसने नहीं कहा ये इसी तरह से होना है बहन? प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी बहन को चंगा करें और उसे स्वस्थ करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। बहन, आप विश्वास करती हुई आई हैं? प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं हमारी बहन पर आपकी आशीषों को मांगता हूँ। बस आपने जो कहा है उस आज्ञा का पालन करते हुए, आपने कहा ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, आपने कहा वे चंगे हो जाएंगे। होने पाए कि मैं यहाँ कुछ क्षण रुक कर कहना चाहता हूँ कि बस लोगों को कुछ क्षण के लिए विश्राम करने दें, बस कुछ क्षण के लिए। एक बार एक आलोचक ने मुझसे कहा था ये ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखें, उसने कहा ये चिन्ह साथ साथ जाएंगे। आपने मेरा संदेश मुकदमा सुना है, यीशु को मुकदमे पर रखते हुए, देखो उसने नूह को बताया बारिश होने वाली है, 120 वर्षों तक कभी भी बारिश नहीं हुई, लेकिन किसी भी तरह बारिश हुई। उसने अब्राहम से कहा कि सारा से उसको एक पुत्र होगा, यह 25 वर्ष बाद हुआ। उसने कभी नहीं बताया कि कब होगा, उसने कहा कि उनके पास पुत्र होगा 25 वर्ष बाद, ऐसा हुआ। देखो उसने यह नहीं बताया कि कब होगा, उसने कहा विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगी, परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। क्या उसने यही कहा था? उसने यह नहीं कहा कि वे उछलकर और से ठीक तभी करेंगे, उसने कहा वे चंगे हो जाएंगे। देखो ये उसकी प्रतिज्ञा है, यही है जो हम विश्वास करते हैं। आओ बहन, क्या आप विश्वास करती हैं कि यह सत्य है? तब आपको चंगा होने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैं अपने हाथों को बहन पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसकी चंगाई के लिए, आमीन। क्या आप विश्वास करती हैं बहन? सारे पापों को स्वीकार कर लिया है और तैयार हैं? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथों को बहन पर रखता हूँ आपकी आज्ञा के अनुसार और यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए मांगता हूँ, आमीन। मैं आपसे चाहता हूँ कि जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करें। मैं चाहता हूँ कि आप रिपोर्ट दें इससे पहले कि ये सभाएं समाप्त हों, क्या हुआ, और बस श्रोतागण को, अन्य लोगों को यह देखने दो कि वास्तव में क्या बात जगह लेती है। हो सकता है आने वाले कल, उसके अगले दिन या कभी भी, आप बस ध्यान देना की बात जगह लेती है। मेरे पास आने वाले पत्रों से यह पता चला है कि यह केवल लोगों को अपने विश्वास को परखने जांचने जीने से कहीं अधिक भिन्न है, क्योंकि यीशु ने कहा वे उन पर हाथों को रखेंगे, वे उन पर हाथों को रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। अब इस बात को पकड़ें जो उसने कहा, उसने यह नहीं कहा कि वे कूदेंगे और फर्श पर ऊपर नीचे दौड़ेंगे, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा वे चंगे हो जाएंगे। क्या उसने यही कहा? यही है जो उसने कहा, यही है जो मैं विश्वास करता हूँ। और वो अब यहाँ है, वो एक जिसने कहा कि वचन यहाँ पर है कि इसे वैसा ही बनाएं। आप विश्वास करते हैं श्रीमान? प्रिय स्वर्गीय पिता, उसके विश्वास के अंगीकार करने पर और भरोसा करते हुए मैं यीशु मसीह के नाम पर उसकी चंगाई के लिए अपने हाथ उस पर रखता हूँ। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथों को इस महिला पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए, तो ठीक है। प्रिय पिता, मैं अपने हाथों को इस महिला पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए। आपने कहा वो चंगी हो जाएगी, चंगाई के लिए तैयार हैं बहन? प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उस पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आप उसे चंगा करेंगे। ठीक है बहन। प्रिय, हर एक चीज चंगाई के लिए तैयार है। आपके विश्वास का अब उत्तर मिल चुका है। आपका विश्वास है कि आप चंगी होने जा रही हैं, और परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उस पर रखता हूँ आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सारे संसार के लिए, हर एक सृष्टि के लिए मैं उस पर हाथों को रखता हूँ यीशु के नाम में उसकी चंगाई के लिए। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने भाई के चंगाई के लिए यीशु के नाम में अपने हाथ उस पर रखता हूँ। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथों को अपनी बहन पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए। गलियारे से नीचे जाते हुए मैं बस आपको थकाना नहीं चाहता था। यदि आप अब इसका विश्वास करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बहन को यीशु मसीह के नाम में चंगा करें। आमीन। मुझे इन लोगों के लिए प्रार्थना करने में मेरी मदद करें। अब हमारे पास यहाँ कुछ रुमाल हैं और इत्यादि चीजें यहाँ पर हैं जिनके ऊपर प्रार्थना की जानी है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना करना जारी रखें। अब ये छोटे छोटे पार्सल हैं। अब मैं जानता हूँ कि लोगों को इस तरह की छोटी सी चीज के लिए प्रार्थना करना बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन यदि आप केवल एक बार मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और बस ध्यान दें, अगर हमने इतने सालों में मिली गवाहियों को संभाल कर रखा होता तो शायद ये मंच भी उन्हें रखने के लिए छोटा पड़ जाता, जो केवल इस प्रकार से प्रार्थना के वस्त्रों को भेजने के द्वारा चंगे हुए हैं। उनमें से लाखों लोग हर कहीं और दुनिया भर में। अब आप जानते हैं कि यह क्या है? कोई तो वहाँ उस रुमाल को ले आए उस युवा के लिए। आपको अपना रुमाल तो पता होगा, क्या आपको पता है भाई? तो ठीक है। और मैंने छोटे अपाहिज बच्चों को चंगा होते देखा है, और आप देखिए यह क्या है, यह बस संपर्क का एक माध्यम है। जैसा कि ओरल रॉबर्ट्स हमेशा कहा करते हैं, यह तो बस संपर्क का एक माध्यम है। हम प्रार्थना करते हैं, अब हम यह स्वयं से नहीं करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल हमें ऐसा करने के लिए आदेश देता है। हम सब जानते हैं कि यह सच है। अब ऐसे कई लोग हैं जो रुमालों और इत्यादि चीजों का अभिषेक करते हैं, तो ठीक है। अब हम सोचते हैं कि यह ठीक है निश्चय ही, लेकिन यदि हम बस, बाइबल में यह नहीं कहा गया कि उन्होंने रुमालों को अभिषेक किया, लेकिन उन्होंने पौलुस के शरीर से रुमाल को लिया। अब देखा मैं किस विषय में बात कर रहा था? अब उन्होंने जो देखा वो जिलाने वाली सामर्थ जो पौलुस में थी, जिससे वे जान गए कि वह परमेश्वर का दास था। वे जानते थे कि परमेश्वर उसमें था। वे जानते थे कि जिस किसी चीज को वह छूता है वो आशीषित हो जाती है। कितने लोग इसे समझ रहे हैं? कहें आमीन। आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ कि पौलुस ने जो किया वह पूरी तरह से वचन के अनुसार था। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मेरे विचार में उसे यह करने का विचार कहाँ से मिला? एलिशा से। यह सही है। देखो, एलिया ने कहा इस छड़ी को ले और जाकर इसे बच्चे पर रख दे, और भविष्यवक्ता ने छड़ी को भेजा क्योंकि वह जानता था कि हर एक चीज जिसे उसने छुआ वो आशीषित थी। वह अपने स्थान को जानता था। वो यदि वह स्त्री को उसी चीज पर विश्वास करवा सकता है। अब देखो, अब बाइबल ने कभी नहीं कहा वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसने कहा वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। अब जरा सोचिए, लोगों ने देखा प्रेरित पत्रस में परमेश्वर की उपस्थिति इस मनुष्य में प्रकट हुई, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को उसकी छाया में लिटा दिया और वे चंगे हो गए। कितने लोग जानते हैं कि यह वचन के अनुसार है? यह बस उतना ही वचन के अनुसार है जितना कि यूहन्ना 3:16। देखो, यह सब परमेश्वर का वचन है। अब लोग, आप जानते हैं कि उस मनुष्य की छाया ने लोगों को चंगा नहीं किया, लेकिन देखो, यदि परमेश्वर की सामर्थ उस भविष्यवक्ता के ऊपर थी, उसके मरने के वर्षों और वर्षों बाद तक बनी रही, इतना तक कि एक मरे हुए मनुष्य को उसके शरीर उसकी हड्डियों पर फेंका गया था। शरीर वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ पर हड्डियाँ थी और परमेश्वर की उपस्थिति उन हड्डियों पर थी, यहाँ तक कि वो मरा हुआ मनुष्य भी जीवित हो गया। अब क्या आप नहीं जानते कि वही परमेश्वर जिसने उन सारी चीजों को किया ठीक आज रात यहाँ पर है? मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कि हमें सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग होना चाहिए। जरा इस पर सोचें। मैं आशा करता हूं कि मैंने अपने श्रोतागण को यह विश्वास करने के लिए प्रभावित नहीं किया है कि यह कुछ तो है जो मैं अपने आप से करता हूं। आप इससे बेहतर जानते हैं, मैं आपका भाई हूं, देखो, और मैं तो केवल आपका भाई हूं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर यहाँ पर है, और मैं जानता हूँ कि उसने हमें कुछ तो दिया है कि हम इसे समझा नहीं सकते हैं। केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा दावा करते हैं कि इसे इस समय यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए यह हमें पहचान भी देता है कि जान जाएं हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। यह हमें यह जानने के लिए पहचान देता है कि ये लोग, ये चुने हुए, निर्वाचित, बाहर बुलाए हुए, पहले से ठहराए हुए। अब यह एक बड़ा शब्द है, पहले से ठहराया जाना, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह सत्य है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि अनंत परमेश्वर ने सारी चीजों को अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा दुनिया की नींव डालने से पहले ठहराया है। यहाँ तक कि मेमने को भी घात किया गया था, और हर एक वो नाम जो कभी किताब में होगा, किताब के लिखे जाने से पहले ही किताब में डाला गया था। अब कितने लोग जानते हैं कि यह सच है? और यीशु उन लोगों को छुड़ाने के लिए आया जो किताब में थे, बाइबल में। मेमना पर्दे के पीछे से आया और किताब को लिया और मोहरों को खोला, जिससे यह किताब मोहर बंद थी, क्योंकि वह उन सभी का दावा करने के लिए आया जिन्हें उसने छुड़ाया था। वह अब बिचवाई करने वाला है, एक बिचवाई करने वाला जो उन लोगों के लिए बिचवाई के काम को कर रहा है जिन्हें उसने छुड़ाया है। वे सब जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे गए थे, ये छुड़ाए गए हैं। जैसा कि मैंने उस रात को एक छोटी सी बात कही थी, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ यहाँ इन सभी रुमालों के लिए। मैं बस फिर से प्रचार करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि एक छोटी सी बात कही थी। मैं आशा करता हूँ कि यह अपवित्र सा नहीं लगता है, देखो, लेकिन उस किसान की तरह जिसने मुर्गी को रखा और उसके पास पर्याप्त अंडे नहीं थे, इसलिए उसके पास एक उकाब का अंडा था और उसने उसे मुर्गी के नीचे रख दिया, और उसने एक उकाब को सेन कर अंडे से बाहर निकाला, और वह सभी मुर्गियों के बीच एक बहुत ही विचित्र सा पक्षी था, क्योंकि वे चीजों को एक जैसा नहीं देखते थे। लेकिन उसने तो हमेशा केवल मुर्गी ही देखी थी, उसने बस एक ही आवाज सुनी थी, यह उसकी अपनी आवाज जैसी नहीं लगती थी, न ही वह मुर्गी की तरह आवाज को निकाल सकता था, या उन चूजों की तरह उसने उनके भोजन की सराहना नहीं की जैसा कि वे खलियान में खाते थे। उनमें कुछ तो अलग ही बात थी, फिर भी वह नहीं जानता था कि वह अंतर क्या है। और फिर एक दिन वहाँ उकाब की माँ आई, वह जानती थी कि उसने बहुत से अंडे दिए हैं, और वहाँ उनमें से एक अंडा था जो उसका होने वाला पुत्र था, वो गुम हो गया था, इसलिए वो उसे ढूंढने को निकली और उसने उसे खलियान में पाया, और वो चिल्लाई, और जब वो चिल्लाई तो छोटे उकाब ने अपनी माँ की आवाज पहचान ली, जैसा कि यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। मैं सोचता हूँ कल रात जब मैंने बैप्टिस्ट के उस विशेष समूह को देखा, प्रेस्बिटेरियन या ये जो भी है, हो सकता है उन्हें मुर्गी के नीचे से बाहर लाया गया हो, मुझे क्षमा करें भाई, देखिए, लेकिन माँ जानती थी कि उसके पास उसके प्रिय जन कहीं तो बाहर हैं, इसलिए वे लोग वहाँ खड़े हुए थे। वे कोई विवाद नहीं कर रहे थे जो उन्हें माँ मुर्गी खिला रही थी और इत्यादि, लेकिन अब वे उकाब हैं। आप देखिए, वे अपने भोजन के लिए उड़ते हैं, समझे। और मैं सोचता हूँ कि कलीसिया कुछ तो उसी दृश्य के समान है जिसे मैंने ज्यादा समय नहीं हुआ टूसान से आते हुए देखा था, या फिनिक्स से टूसान जाते हुए मैंने एक रहस्यमय दृश्य देखा। और जो कुछ हुआ था इसे देखकर एक प्रकार से मेरा हृदय टूट गया। कैसे? एक बाज जो हवा में उड़ता रहता है, उकाब का भाई जो कि कलीसिया का एक नमूना है और यहोवा उकाब है, उसने अपने भविष्यवक्ताओं को उकाब कहा, उसने स्वयं को यहोवा कहा उकाब। लेकिन इस बाज ने बहुत पहले ही अपनी पहचान को खो दिया है, क्योंकि अब यह वैसे आकाश में उड़कर अपना शिकार नहीं करता जैसा इसे करना चाहिए, लेकिन यह टेलीफोन के तारों पर बैठता है और एक मुर्दाखोर पक्षी के जैसे व्यवहार करता है। वह मरे हुए खरगोशों का शिकार करता है जिन्हें कार ने कुचल कर मार दिया है, और वो और गिद्ध वहाँ जाते हैं और एक साथ खाते हैं। वो गिद्ध की तरह उछलता है, न कि वैसे चलता है जैसे उसे चलना चाहिए। उसने अपनी पहचान खो दी है। और मैं इसे पूरे ईश्वरीय प्रेम और आदर के साथ कहता हूँ, कलीसिया ने बहुत पहले ही एक बहन उकाब के रूप में अपनी पहचान को खो दिया है। वो इधर उधर बैठती है बजाय इसके कि वचन में गहराई से खोजबीन करे और देखे कि क्या ये बातें सही हैं। वो संडे स्कूल के साहित्य के झुंड की प्रतीक्षा कर रही है जो कहीं तो बुद्धिजीवियों के झुंड के द्वारा बनाया गया है। कुछ मरे हुए खरगोश जिसे कहीं तो और मारा गया है एक गिद्ध की तरह उछलता है। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इससे उड़कर दूर चले जाएं। ये प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, ना ही किसी ने उनके बारे में क्या कहा, लेकिन परमेश्वर ने उनके बारे में क्या कहा, वे सच्चे हैं। मुझे उकाब के साथ जुड़कर बहुत खुशी है। आइए हम सब मिलकर हमारे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, यह बाइबल में सिखाया गया है कि उन्होंने पौलुस के शरीर से रुमाल और वस्त्र को लिया और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल गईं और अशुद्ध आत्माएं उन्हें छोड़कर चली गईं। अब पिता, मैं यहाँ इन रुमालों के ऊपर खड़ा हूँ। यह हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो उपस्थित है। यह हम सब एक साथ मसीह का शरीर हैं। हम अनुग्रह और प्रेम के द्वारा ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ उसकी दुल्हन का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं, और विश्वास करते हुए उसके राज्य में उसके साथ संगी हैं। और हम जानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप अभी भी यीशु हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन लोगों के विश्वास का आदर करेंगे। यदि वे पहले पौलुस के दिनों में रहते तो उन्होंने यही सुसमाचार को सुना होता, इन्हीं चीजों को देखा होता, इसलिए वे उसी तरह के लोग हैं। आप वही परमेश्वर हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय परमेश्वर कि आप उनके विश्वास का आदर करें जैसे आपने बाइबल के दिनों में किया था, और होने पाए हर दुष्ट शक्ति, हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा जिससे लोग बंधे हुए हैं, जो ये रुमाल और पार्सल यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, होने पाए बीमारी की वह दुष्ट शक्ति उन्हें छोड़ दे। यह एक समय कहा गया था कि इज़राइल अपने कर्तव्य की पंक्ति में चल रहा था एक प्रतिज्ञा के देश की ओर, और ठीक कर्तव्य की पंक्ति में शत्रु ने आकर और उन्हें एक कोने में घेर लिया, और लाल सागर उनके सामने आकर उनके कर्तव्य की पंक्ति से रोक दिया जब वे आगे बढ़ रहे थे। और परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे की ओर देखा अग्नि के स्तंभ में से होते हुए, और समुन्द्र डर गया। उसने इसकी लहरों को पीछे हटा लिया, क्योंकि समुद्र की तह में परमेश्वर की लहरें थी, और इसने उसके बच्चों के लिए आज्ञाकारिता की पंक्ति में चलने के लिए रास्ता बनाया। अब परमेश्वर, यदि लाल सागर डर गया और अपनी लहरों को, अपने जल को पीछे हटा लिया और यात्रा करने वाले बच्चों को स्थान दिया जो आज्ञाकारिता में आगे की ओर बढ़ रहे थे, प्रिय परमेश्वर, तो आज रात अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में से होते हुए देखें जिसने प्रतिज्ञा को किया है। और जब ये रुमाल लोगों के बीमार शरीरों पर रखे जाते हैं, होने पाए कि परमेश्वर की आंखें देखें, और होने पाए वह बीमारी, वो शैतान डर जाए और पीछे हट जाए, और होने पाए लोग अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति के साथ प्रतिज्ञा के देश की यात्रा को जारी रखें। जब इजरायली जंगल में से होते हुए आगे बढ़े तो दूसरे छोर पर उनके बीच एक भी निर्बल व्यक्ति नहीं था। होने पाए ऐसा इन लोगों के लिए प्रदान किया जाए पिता, क्योंकि हम इन रुमालों को यीशु मसीह के नाम में भेज रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे हर एक को। जब आप अपने रुमालों को लेते हैं, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे सुनता है? देखा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ना ही एक बिंदु भी संदेह करें। देखो, यह हो सकता है बहुत ही अजीब सा लगे, मुझे क्षमा करें, बस एक मिनट सुनना, ना ही एक बिंदु भी संदेह करें, लेकिन अब यह विश्वास करें, हमने जो मांगा है परमेश्वर इसे देता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यहाँ यही परमेश्वर है जो आपके हृदय के भेद को जानता है? आप जानते हैं और विश्वास करते हैं कि यही परमेश्वर है? अब बस अपने मन को स्थिर करें, ये और कुछ भी और नहीं हो सकता है, समझे? अब क्या हो यदि एक आने वाला महान कल हो, तो आने वाले वर्षों में यह सब इतिहास बन जाएगा, और जब आने वाले वर्षों में लोग यदि ऐसा हुआ तो वे आकर और कहेंगे, खैर यदि मैं उस समय पर रहा होता और यह सब होते हुए देखता, भाई तो बस इतना ही जानना मेरे लिए पर्याप्त होता, मैंने ठीक तभी इसका विश्वास किया होता। देखो यह वही चीज है जिस पर आप विश्वास करते हो। यदि आप वहाँ पहले होते थे जब उसने इसे तब किया था, याद रखें यह अब भी वही है, यह उसका जीवन आप में है। परमेश्वर आपको आशीष दे।